بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام شرکا کو، خواتین کو، حضرات کو بہت خوش آمدید. آج کا جو سیشن ہے اس میں ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بھائی دوست اور اسکالر ڈاکٹر جنید صاحب کو ہمارے درمیان موجود ہیں. ڈاکٹر جنید صاحب کا تعارف میں مختصرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر جنید نے بی ایس کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں. اس کے بعد انہوں نے اپنا ایم فل جو ہے سسٹم ڈائنمکس کے اندر اور پی ایچ ڈی سسٹم مائکرو بایولوجی کے اندر انہوں نے کیا تھا. یہ ان کا سیکولر تعلیم کا پس منظر ہے. اس کے علاوہ مختلف آپ نے سبجیکٹس پڑھے ہیں، بایولوجیکل فزکس ہے، نارویجن اکیڈمکس رائٹنگ، فلاسفی آپ نے پڑھی نارویجن یونیورسٹی آف لائف سائنسز سے، ناروے سے، اور پھر جرمنی سے بھی آپ نے مزید تعلیم کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا، اور اس وقت جرمنی میں ہی مقیم ہیں. علوم اسلامیہ میں آپ نے الموریس سے مختلف کورسز بھی کیے ہیں، اور اس وقت بھی جاوید احمد صاحب وامدی کے زیر نگرانی ایک پروجیکٹ آپ مکمل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی گہری آپ کی نظر ہے جدید علوم کے اوپر بھی، اور بہت اچھی سمجھ ہے ماشاءاللہ دینی علوم کی بھی. تو آج جنید ہمارے ساتھ ہوں گے، ڈاکٹر جنید صاحب، اور میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ استاذ، اور آپ تمام شرکاء کا بھی بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ کو میری اسکرین دکھائی دے رہی ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. آج میں آپ کے سامنے جو ماڈرن فزکس تھیریز پیش کرتی ہے کائنات کے آغاز کے بارے میں، کہ کیسے یہ سب کچھ کاسمک، جتنا آپ اس کو ٹراما کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ کیسے شروع ہوا، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مین سٹریم یا پاپولر جو پکچر ہے، مین سٹریم بھی ہے فزسسٹ کے درمیان میں، اور یہ اس کو پاپولرائز بھی بہت کیا گیا ہے. مختلف آپ کو فزسسٹ کے چینلز ملتے ہیں، پاپولر بکس ملتی ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ مین سٹریم پکچر ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام فزسسٹ یعنی اس کے قائل ہوں، کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں اور بہت پرومیننٹ قسم کی ایکسیپشنز ہیں، لیکن بہرحال یہ جو پکچر پیش کروں گا آپ کے سامنے، یہی مین سٹریم فزکس کی پکچر ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وجود بیچ میں کیسے آتا ہے، اس کو ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ اسی فزکس سے، اسی نیریٹو سے کس طریقے سے وہ تھیولوجیکل امپلیکیشنز بھی ڈرا کرتے ہیں فزسسٹ. شروع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فزسسٹ یا سائنٹسٹ جو ہیں، ان کو مسئلہ کیا درپیش ہے. یعنی میں نے اس کا جو عنوان باندھا ہے وہ یہ کہ وائی ہیو مینی سائنٹسٹ ٹرن دیئر بیکس آن گاڈ. کیا وجہ ہے کہ وہ یا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی جتنی کریشن سٹوری ہے یونیورس کی اس میں لاتے ہی نہیں ہیں، اسکپ کر جاتے ہیں، یا پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کر دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں نے ایک اقتباس سلیکٹ کیا آپ لوگوں کے لیے، اسٹیون ہاکنگ کی یہ جو لاسٹ مکمل کتاب ہے دا گرینڈ ڈیزائن، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے. یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو مسئلہ کیا درپیش ہے. میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. Humans are a curious species. We wonder, we seek answers. Living in this vast world that is by turns kind and cruel, and gazing at the immense heavens above, people have always asked a multitude of questions. What is the nature of reality? Where did all this come from? Did the universe need a creator? And so on. Traditionally, these are questions for philosophy, but philosophy is dead. Philosophy has not kept up with modern developments in science, particularly physics. Scientists have become the bearers of the torch of discovery in our quest for knowledge. یہ جو انہوں نے بات بیان کی ہے، اس کی جو جسٹ بنتی ہے اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، وہ یہ ہے. ان کو بیسیکلی جو ان کا ایک فریم ورک ہے جس میں یہ کام کرتے ہیں، وہاں سے پرابلم پیدا ہو رہا ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیراڈائم پرابلم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فلسفے نے اپنے پورا زور لگا دیا کہ جو میٹافیزیکل حقیقتیں ہیں، جو ما بعد طبیعتی حقیقتیں ہیں، ان کو جانا جائے کہ کائنات سے پہلے کیا تھا، کیا کوئی اس کا بنانے والا ہے، ہم کیا جان سکتے ہیں، ہم کیا نہیں جان سکتے ہیں، سو آن سو فور. لیکن فلسفے نے اس کا کوئی حتمی جواب ہمیں وہ نہیں دے سکا. بحثیں تو رہی، کوشچنس اٹھا لیے، جوابات ہمیں کہیں سے نہیں ملے اس کے. اب جو سائنس ہے وہ آپ دیکھیں گے، جو سائنٹیفک ریولوشن ہوا 17th صدی سے، اس میں بتدریج سائنس نے بہت ساری پروگرس کی. یعنی آپ جانتے ہیں کہ ڈیکارٹ جن کو کہا جاتا ہے کہ ہی واز ون آف دا موسٹ پرومیننٹ فگرس جو جنہوں نے فلسفے سے سائنس کی طرف پہلا قدم رکھا. ظاہر ہے کہ ایرسٹوٹل وغیرہ اس سے پہلے بنیادیں اس کی بنا ڈال چکے تھے, لیکن ڈیکارٹ وہ ماڈرن لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے who turned the table, so to speak. کیونکہ فلسفہ ہی پہلے اصل تھا, لوگ آبزرویشن کو, چیزوں کو جاننے میں, ان کی ایکسپیریمنٹیشن میں اور ان ساری چیزوں میں وہ زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو وہاں سے جب یہ ٹرن آیا اور سائنٹیفک ریولوشن ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ پھر سائنس نے بہت ساری ترقی کی اور بہت ساری چیزوں کے جوابات دی. تو سائنس کا اپنا ایک فریم ورک ہے اور وہ فریم ورک ہم لوگ جانتے ہیں کہ نیچرلسٹک فریم ورک ہے. اس فریم ورک میں جو میٹافزیکل حقیقتیں ہیں, یعنی میٹافزیکل, کچھ میٹافزکس تو سائنس کے اندر داخل ہے, یعنی فلسفی آف سائنس میں داخل ہے, لیکن سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کاز اینڈ افیکٹ کے طریقے پر نیچرلسٹک ایکسپلینیشنز پیش کرتے ہیں, چاہے وہ کائنات کے بارے میں ہوں کہ کائنات کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, چاہے وہ یعنی پورے کاسموس کے بارے میں ہو یا چھوٹے سے چھوٹے لیول پر ہو کہ بھئی الیکٹران جو ہے وہ کیوں موو کرتا ہے ایٹم کے گرد. تو اس میں بہت ساری تھیوریٹیکلی بھی ترقی ہوئی اور پریکٹیکلی بھی بہت ساری ہم نے ترقی دیکھی. تو اب یہ جو اسٹیون ہاکنگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ فلسفہ تو بالکل یعنی اپنی موت آپ مر چکا, ادھر سے ہمیں کوئی جوابات نہیں ملے. تو اب سائنس جو ہے وہ کیونکہ ایک بہت سکسیزفل انٹرپرائز کے طور پر سامنے آئی ہے, تو اب سائنٹسٹ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور وہ یہ جو فلسفیانہ قسم کے سوالات ہیں ان میں بھی انہیں سے امید باندھی جاتی ہے کہ وہ ہمیں جوابات دیں گے. تو اسٹیون ہاکنگ نے اپنی اس کتاب میں, دس از ون آف دا مینی پاپولر بکس جو کہ یہ ساری نیریٹو کم و بیش بیان کرتی ہے, اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے اور اس میں بیان کیا کہ وہ بتائیں گے کہ فزکس جو ہے وہ کیا ہمیں بتاتی ہے ان کوشچنس کے بارے میں, سو ٹو اسپیک بگ کوشچنس آف لائف یا میٹافزیکل کوشچنس اینڈ سو آن. تو یہ بیسیکلی ایک سرچ ہے کہ سیلف کنسسٹنٹ نیچرلسٹک ایکسپلینیشن یونیورس کی مل جائے اور ہمیں فزکس ہی سے, نیچرل سائنس سے مل جائے ہمیں فلسفہ, اور فلسفے سے یاد رکھے کہ ریلیجن بھی اس میں شامل ہے کیونکہ ریلیجن کا ایک جو بیسک پورشن ہے وہ میٹافزکس ہے کہ اس کائنات سے ماورا کیا حقیقتیں ہیں, کیا خدا کا وجود ہے نہیں ہے, فرشتے پائے جاتے ہیں, شیطان ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ ساری چیزیں. تو کیا بات بنی اب کہ فلسفی اور ریلیجن کو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور ہم سائنس کے پیراڈائم میں نیچرلسٹک ایکسپلینیشنز کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے جو بھی نان آبزرویبل سپر نیچرل حقیقتیں ہیں جن کو ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے. سائنس ظاہر مشاہدہ سے شروع ہوتی ہے نا آپ کے علم میں, کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا. فلسفہ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی مشاہدے سے بہت دور تھا, وہ عقلی جو استنباط ہے اس پر زیادہ چلتا تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ جو پلیٹو وغیرہ کی جو وہ بیان کرتے ہیں کہ جو فارمز ہیں یا ایک ماورا جو عالم ارواح پایا جاتا ہے جس سے روح آئی ہے, وہاں پر اصل چیزیں پائی جاتی ہیں, حقیقتیں مراقبے مشاہد مراقبے یا انر مشاہدے سے ڈسکور ہوں گی یا غور و فکر سے ڈسکور ہوں گی. تو یہ سب چیز جب چینج ہوئی اور مشاہدہ جو ہے وہ اصل قرار پایا, آپ جانتے ہیں کہ 17ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں جو یہ یہ جو پازیٹیوزم کا فلسفہ ہے, تو اس میں یہ تھا کہ اب اللہ کے لیے, میریکلز کے لیے, ارواح کے لیے, فرشتوں کے لیے یا شیاطین کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں, ان کو ایکسکلوڈ کر دیا کہ ان کو ایک طرف رکھ دیا. اچھا یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تمام جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات سے اگری نہیں کرتے, لیکن زیادہ تر سائنٹسٹ جو ہیں وہ نیو ایج سائنٹسٹ خاص طور سے وہ ڈسمس کر دیتے ہیں فلسفی کو بھی اور ریلیجن کو بھی اور سائنس سے ہمیں جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. اسی بات کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا لاسٹ سلائیڈ میں کہ اللہ تعالیٰ کو ایکسکلوڈ کیا یا میٹافزیکل سپر نیچرل جتنی حقیقتیں ہیں اس کو سائنس کا جو پیراڈائم ہے اس نے ایکسکلوڈ کیا, لیکن ریسنٹ ہسٹری میں یہ ہوا کہ نہ صرف ایکسکلوڈ ہوا اللہ تعالیٰ کا وجود یا باقی جتنی سپر نیچرل حقیقتیں ہیں, بلکہ آگے بڑھ کر سائنٹسٹ نے ये दावा भी किया तमाम ने, एक 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 आप समझ लें कि शुरू में एक ग्रोह ने, कि खुदा ताला को साइंस में ये बताती है कि नहीं होना चाहिए या बहुत इम्प्रोबेबल है, या खुदा के वजूद की हमें सिरे से कोई जरूरत ही नहीं है कायनात को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये फिर बदतरीज ये जो कैंप है जो साइंस बेस्ड एथीज्म है इसमें इजाफा होता चला गया, और इसके पीछे मुख्तलिफ महरकात हैं जैसे 9/11 का इवेंट और ये रिसेंट बिल्कुल ये बात है। तो उसके बाद फिर इसमें एक्सप्लोजन हुआ और बहुत सारे जो है हमें एथिस्टिक लिटरेचर की किताबें मिलती हैं साइंस बेस्ड, साइंस ने खुदा का इनकार कर दिया, ये एक मोटी सी बात कह दी जाती है। तो साइंस ने जो इनकार किया, ये जो रिसेंट फिनोमिनन है इसकी भी जाहिर है कि तारीख में कुछ कुछ इसकी बुनियादें हैं। तो इसकी जो पहली बुनियाद है वो हमें फराहम होती है बायोलॉजी से, या हम उसको ज्यादा प्रिसाइज कर लें तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हम कह देते हैं इसको। ये जो नजरिया इर्तका है जो वॉलस और डार्विन ने बैकबक पेश किया, बेसिकली इसने प्रॉब्लम पैदा कर दिया। अच्छा, इसने जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम ही पैदा किया, जैसे ये वॉलस तो नेचुरलिस्ट थे, ये खुदा पर बिलीव नहीं रखते थे, लेकिन डार्विन ऑन दी अदर हैंड एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव रखते थे, थियोलॉजी में ट्रेंड थे, और अपने आखिरी वक्त तक इन्होंने खुदा का इनकार नहीं किया, बल्कि कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें ये पजल होकर रह गए। तो एनीवे वो क्वेश्चंस ये थे जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से हमारे सामने आए कि कायनात में जो जिंदगी है उसका जब फैलाव हुआ है, या बहुत सारी हमें लाइफ फॉर्म्स नजर आते हैं, या जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमें डिजाइन नजर आता है, वो एक्सप्लेन हो जाता है थियरी ऑफ इवोल्यूशन से, कि खुद ब खुद अनगाइडेड प्रोसेसेस मुख्तलिफ चले हैं और वो बदतरीज तख्लीक करते चले गए हैं मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स को। लेकिन जो एवोल्यूशनरी थियरी है ये इससे डील नहीं करती कि पहली जो हयातियाती चीज है, जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे वजूद में आ गया, लेकिन एक बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म को ज्यूम किया जाता है कि वो नेचुरलिस्टिक प्रोसेस से वजूद में आ गया होगा, और उसके बाद वो डाइवर्सिफाई होता होता सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर से तरक्की करते हुए, यानी जो मल्टी सेलुलर से मेरी मुराद ये है कि फंजाई वगैरह जो होते हैं उनसे तरक्की करते हुए प्लांट्स, और फिर ये करते करते रेप्टाइल्स मछलियां, और फिर मैमल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारा इर्तका का सफर हुआ और ये जारी है। तो इसमें इसने फिर खुदा की हमें क्या जरूरत है कि खुदा चीजों को मुख्तलिफ स्पीसीज को, जैसे कि ये समझा जाता था खास तौर से जो क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है उसमें, कि अल्लाह ताला ने शुरू में ये तमाम जानवरों को बनाया अपने हाथ से या जैसे भी दस्ते कुदरत से। तो उसमें हमें किसी, अब इस सारे प्रोसेस में किसी बनाने वाले की हमें क्या कोई जरूरत है या नहीं है, तो एक क्वेश्चन पैदा हो गया। तो खुदा का जो वजूद है उसके बारे में क्वेश्चन पैदा हो गया, क्योंकि खुदा के वजूद पर यहीं से सवाल किया जाता था। जो हमें सबसे ज्यादा प्रोफाउंड डिजाइन नजर आता है वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में नजर आता है, ठीक है, पहाड़ दरिया वगैरह में तो है ही, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो असल, जो क्रिश्चियन खास तौर से जहां से कुरान मजीद ने भी इस्तदलाल किया यहीं से, तो वो अब बात ये हुई कि जब इन चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नेचुरलिस्टिक प्रोसेसेस से, तो खुदा का वजूद फिर हमें उसकी क्या जरूरत है, क्या खुदा आया है भी कि नहीं। तो ये एक एग्नोस्टिसिज्म जिसको आप कहते हैं एथिज्म से जरा पहले का स्टेप, कि एक आप कहते हैं कि भाई, या तो आप कह लें कि तजब्जुब का आप शिकार हो गए, या आप कहते हैं कि जी अब हमें, हमारे पास नेचुरल वर्ल्ड में कम अज कम कोई एविडेंस नहीं है, ये तो खुद सब कुछ हो रहा है, कोई बनाने वाले ने अपने हाथ से बनाकर हमारे सामने चीजें पैदा कर दी, ऐसा तो नहीं हो रहा। अच्छा, इसने सिर्फ खुदा के वजूद के बारे में नहीं सवाल खड़े किए, बल्कि इसने खुदा की नेचर के बारे में, जो हम कहते हैं खुदा बेनेवोलेंट है, अपने मखलूक से मोहब्बत रखता है, और वो सारा खुदा की जो अच्छी सिफात है, तो नेचर के अंदर ये जो प्रोसेस चल रहा है एवोल्यूशन का, ये तो नहायत ही जालिमाना तरीके का प्रोसेस है। आप देखें कि इसमें चीर फाड़ है, इसमें स्पीसीज एक दूसरे को बिल्कुल, यानी एक एक जंग की कैफियत में, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप उसको कह सकते हैं। और आप देखें कि छोटे छोटे जानवर, बंदरों के जो इन्फेंट्स हैं, उनको चीर फाड़ दिया जाता है, और वो खौफ महसूस कर रहा होता है बंदर का, वो जो बच्चा है। कई नेशनल जियोग्राफिक पर आपने काफी सारी उसमें देखी होंगी इस किस्म की वीडियोस। तो एनीवे, तो नेचर खुदा के बारे में भी सवाल पैदा कर दी, और उसके बाद क्रिएटिव एबिलिटीज जो खुदा की हैं उसके बारे में भी ये सवाल पैदा कर दिया कि इसमें तो बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो बड़े एक ट्रायल एंड एरर के तरीके पर काम कर रहे हैं, यानी एवोल्यूशन के अगर आप लोग जानते हैं, तो मैं उसकी डिटेल में इस लेक्चर में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बड़ा एक अलर्ट अप सा, बड़ा एक ट्रायल एंड एरर बेस्ड प्रोसेस है। तो क्या खुदा, जिसको हम कहते थे कि वो बहुत ही जबरदस्त कुदरत रखता है और बेहतरीन खालिक है, तो वो बेहतरीन खालिक ये तरीका इख्तियार कर रहा है एवोल्यूशन के लिए? तो ये सवाल पैदा हो गए। तो आप ये देखें, मैं बुनियाद उठा रहा हूँ नेचुरलिज्म की, जो पहले यहाँ यहाँ से ये पैदा हुआ, ठीक है, बायोलॉजी से। रिचर्ड डॉकिंस किसी तारफ का मोहताज नहीं है, जो वन ऑफ द फोर जिनको कहा जाता है हॉर्समैन ऑफ न्यू एथिज्म, वो ये बयान करते हैं अपनी किताब में जो इनकी काफी पुरानी बेस्ट सेलर है, द ब्लाइंड वॉचमेकर। तो उसमें ये बयान करते हैं, आई कुड नॉट इमेजिन बींग एन एथिस्ट एट एनी टाइम बिफोर 1859 व्हेन डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड। ठीक है, जब डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश की, उससे पहले मैं अगर होता तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं एथिस्ट होता। क्यों? उसकी वजह यह है कि इसको ये हम तो बोलते हैं कि ये डिजाइन है ना, किसी ने बनाया है, किसी डिजाइनर का, वो कहते हैं ये अपेरेंट डिजाइन है, लगता है कि ऐसे कि चीजें डिजाइन हुई है। तो मसला क्या था कि वो क्यों नहीं एथिस्ट हो सकते थे? क्योंकि अपेरेंट डिजाइन मोस्ट प्रोफाउंडली फाउंड इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इससे हम इस्तेदलाल कर रहे थे कि कोई कॉन्शियस डिजाइनर, कोई माइंडफुल डिजाइनर होना चाहिए। तो इवोल्यूशन ने ये किया, ये मैंने स्लीप यहां से इसलिए बनाया क्योंकि बेसिकली ये क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू के साथ इनका ये उसी में ये लोग पैदा हुए और उसी जो वर्ल्ड व्यू है उसी के साथ इनकी सारी कश्मकश भी थी। तो अब कॉन्शियस डिजाइनर को वो समझते हैं कि रिप्लेस कर दिया है कि किसी ने ये डिजाइन नहीं किया, बल्कि नेचुरलिस्टिक तरीकों से खुद ब खुद जिंदगी इवॉल्व होती चली गई है और मुख्तलिफ स्पीसीज वजूद में आना शुरू हो गई। ये पहली बुनियाद है जो नेचुरलिस्टिक साइंस बेस्ड वर्ल्ड व्यू है या एथिस्टिक पिक्चर है, उसकी ये पहली बुनियाद है। इसकी जो दूसरी बुनियाद है जो इवन डीपर है, उसकी लोगों को तलाश थी, यानी सवालात बहुत बड़े बड़े फिर बाकी थे कि जिंदगी तो चलो ऐसे जो है वो प्रोलिफरेट कर गई, तो कायनात के बारे में क्या ख्याल है, लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में क्या ख्याल है, लॉज ऑफ नेचर के बारे में क्या ख्याल है? तो देखिए, रिचर्ड डॉकिंस जिसको बयान करते हैं, दे रिमेन डीप क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी दैट अवेट देयर डार्विन। यही के सब चीज कैसे शुरू हुई, कायनात कैसे वजूद में है सारा। तो वो कहने का उनका मकसद ये है कि जो फिजिक्स है या कॉस्मोलॉजी है, उसको अपने सो टू स्पीक इब्राहिम की तलाश है। डार्विन ने जो बायोलॉजिकल डिजाइन था उसको एक्सप्लेन कर दिया इवोल्यूशनरी थ्योरी के जरिए से, या वॉलस भी आप कह सकते हैं, लेकिन अभी फिजिक्स के बिग क्वेश्चंस बाकी हैं कि ये तमाम जो हमें चीजें नजर आती हैं ये शुरू में कैसे वजूद में आई। इसमें देखें, ये जैसे मैंने आपको ये दिखाई कि एक ये पॉपुलर किताब है, तो ये यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग 2000 के की दिहाई में, सन 2000 जब शुरू हुआ तो बहुत सारी किताबें आई और अभी तक तसलसल उनका जारी है। तो ये किताब है लॉरेंस क्राउस की, जिन्होंने ये नुक्ता नजर पेश किया कि जो हमारी यूनिवर्स है ये खुद ब खुद आप से आप पैदा हो गई है बगैर किसी कॉज के और फ्रॉम नथिंग। ठीक है, ये आप टाइटल में देख सकते हैं, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। तो जब इसका आफ्टरवर्ड लिखा रिचर्ड डॉकिंस ने, तो वो इसमें बयान करते हैं कि डॉकिंस इन हिज आफ्टरवर्ड ऑफ दिस बुक कंपेयर्स लॉरेंस क्राउसेस अ यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग टू डार्विन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड सजेस्ट इट माइट बी कॉस्मोलॉजिस्ट डेडलीस्ट ब्लो टू सुपर नेचुरलिज्म। कि अल्लाह ताला या जो भी सुपर नेचुरल मेटाफिजिक्स है उसके लिए ये डेडलीस्ट ब्लो है कि अब तो कायनात वो बता रहे हैं फिजिसिस्ट के खुद ब खुद वजूद में आई है बगैर किसी कॉज के, नथिंग से, तो अब खुदा की क्या जरूरत बाकी रहेगी। ये थीसिस जो न्यू फिजिक्स का है, इसको आज के लेक्चर में हमने जरा खोलना और इस पर बहस करनी। देखिये, मैं इसको इन अ नटशेल स्टीवन हॉकिंग ने जैसे बयान किए पहले वो प्रेजेंट कर दूंगा, उसके बाद फिर हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कोई थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ड्रॉ नहीं करें, पहले हमने उनकी बात समझनी जैसे कि वो प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे ध्यानदारी के साथ, उनकी बात को खोलना है, समझना है, और जाहिर है कि फिर मजीद सेशंस हमें चाहिए होंगे। ये पिक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों की थोड़ी मुझे सबर भी चाहिए होगा, और आधी पिक्चर मैं यहां पर पेश कर दूंगा और आधी पिक्चर अगले सेशन में मैं पेश करूंगा। जब वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हमारे सामने तमाम चीज आ जाएगी, 2 जमा 2 4 की तरह कमोबेश, तो हम उसके बाद फिर उस पर तबसरा करेंगे और देखेंगे कि खुदा के वजूद के लिए क्या वाकई ऐसा है कि खुदा के वजूद की कोई जरूरत बाकी नहीं रही, या क्या मामला। तो ये जो सारा सारी थीरी है, इसको हम एक लफ्ज में बयान करें तो दिस इज सेल्फ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। स्टीवन हॉकिंग इसको ऐसे बयान करते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इटसेल्फ फ्रॉम नथिंग। के लॉ ऑफ ग्रेविटी मौजूद है, उसकी वजह से यूनिवर्स जो है वो अपने आप को कर सकती है क्रिएट नथिंग से, और उसने किया भी ऐसे। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन इज द रीजन देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग। ये जो रिचर्ड फाइनमैन ने सवाल उठाया था कि व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ लेट, तो उसका इन्होंने ये जवाब दिया स्टीवन हॉकिंग ने कि स्पॉन्टेनियस यक बयक एकदम से कायनात वजूद में आ गई, इट पॉप्ड इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम नथिंग। तो ये वजह है कि देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग, इसकी हमने तफसील करनी। द यूनिवर्स डिडंट नीड अ गॉड टू बिगिन, ये उन्होंने बिल्कुल मामले को साफ कर दिया। फिर इन्होंने यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी का जिक्र किया था, तो लैरी किंग लाइव में जब इनके 2-3 इंटरव्यूज है, 2012 में जो इंटरव्यू इन्होंने दिया, उन्होंने बयान किया कि ग्रेविटी एंड क्वांटम थियरी कॉज यूनिवर्सेस टू बी क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ नथिंग। तो यहाँ पर ये क्वांटम थियरी का इजाफा है, इसको हम देखेंगे। आपके जहन में कोई सवाल पैदा होते हैं तो आप लेक्चर के दौरान पूछ सकते हैं मुझसे। आज का लेक्चर जो है वो 1.5 घंटे का होगा, तो इसमें बाद में भी सवाल लिए जा सकते हैं, उसके लिए कुछ टाइम आई होप बच जाएगा। लेकिन आप लोगों को अगर कोई इमीडिएट क्वेश्चन आता है जहन में, या कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप मुझे रोककर पूछ सकते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर मैं आपके सामने पेश करूंगा, इसमें हमें कुछ ना कुछ डिटेल में जाना पड़ेगा। जाहिर है कि हम बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन डिटेल्स में फिर भी हमें जाना पड़ेगा। तो ये मुख्तलिफ फिजिसिस्ट हैं कमोबेश, जिनको जब मैंने इसको तहरीर किया है तो इन सब से इस्तफादा किया है, इनके कामों को कोट किया, तो फिर ये पिक्चर सामने आई है। मतलब मुख्तलिफ बिट्स कुछ यहाँ पड़े होते हैं, कुछ यहाँ पड़े होते हैं, उनको इकट्ठा करके तो ये पिक्चर सारी मैंने आपके लिए, यानी जो यहाँ पर पेश करूंगा वो तहरीरी शक्ल में भी पेश की। तो ये किसी एक साइंटिस्ट का ये मामला नहीं है। यहाँ पर वैसे जितने साइंटिस्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम या एथियस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं, सिवाय पॉल डेविस के। ये आइंस्टाइन टाइप खुदा पर यकीन रखते हैं, जिसने कायनात को वजूद बख्श दिया, लेकिन अब वो कायनात में के साथ कोई वो उसमें मुदाखलत नहीं करता उसके कामों में। थोड़ा सा फर्क है, आइंस्टाइन के जो खुदा थे वो वहदतुल वजूदी थे, स्पिनोजा के, या आप कह लें कि भगवद गीता से वो बहुत इंस्पायर्ड थे। तो एनीवे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां से हमारी स्टोरी शुरू हो रही है, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स आउट ऑफ नथिंग। अच्छा, इसमें बुनियादी और पहली बात यह है कि एब्सोल्युटली नथिंग, जिसको फिलोसफर्स कहते हैं या आम जुबान में हम भी कहते हैं एक्स नाइलो जिसको कहा जाता है, वो पिक्चर हमारे जहन में ये आती है कि कुछ भी ना हो, ना स्पेस हो, जाहिर है स्पेस के अंदर चीजों का क्या सवाल, वो तो नहीं होनी चाहिए, स्पेस भी ना हो, टाइम भी ना हो, कुछ भी ना हो। पिक्चर करना इसको बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक जो प्रैग्मेटिक तस्वुर बनता है वो ये कि होने की नफी है, ठीक है ना, यानी नफी का इस बात आप कह लें, या होने की नफी है कि कोई भी चीज ना हो। मॉडर्न फिजिक्स हमें ये बताती है कि इस किस्म की कोई चीज सिरे से पाई ही नहीं जा सकती। क्वांटम फिजिक्स हमें ये बताती है स्पेसिफिकली कि देयर इज नो सच थिंग इन द यूनिवर्स एज कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस और नथिंग। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसकी बेसिस पे ये बात कही जाती है। जो लोग इस प्रिंसिपल से वाकिफ हैं, मैं थोड़ा सा दो लफ्जों में तारफ करवा दूं, बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं कि आप एक को अगर मेजर करना चाहें और प्रिसाइजली उसको मेजर कर लें, जैसे कि एक क्वांटम ऑब्जेक्ट का बहुत छोटे लेवल पर इलेक्ट्रॉन का जो पोजिशन है उसको मुतयन कर लें तो उसकी वेलोसिटी या उसकी मूवमेंट एम्बिगुअस हो जाती है, उसमें वो फिर प्रिसाइज उस तरीके से नहीं रहती, और खुद उसका जो लोकेशन है एक इलेक्ट्रॉन की उसको भी अगर आपने मुतयन करना है तो प्रिसाइजली बिल्कुल मुतयन नहीं कर सकते, बल्कि कुछ उसके अंदर ही भाम होता है। दूसरी बात जो मैंने आपसे पहले की, एक तो उसके अंदर ही भाम होता है और दूसरी बात यह कि जितनी प्रिसाइज है जितना उस भाम को आप दूर करना चाहेंगे एक हद तक आप दूर कर सकते हैं, जितना दूर करना चाहेंगे तो दूसरी किस्म की कुछ इंफॉर्मेशन हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाएगी। तो इसको जैसे मशहूर जुबान में इसको पॉपुलर तरीके पर कह दिया जाता है कि वेलोसिटी एंड लोकेशन ऑफ अ क्वांटम ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली मेजर्ड एक्यूरेटली, तो एक को मेजर करने जाएंगे तो दूसरा खो जाएगा। इसमें यही रिलेशनशिप जो ये पाया जाता है ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में या स्पीड के बारे में या उसके पाथ के बारे में जहां वो मूव कर रहा होता है, यही इसी किस्म का रिलेशनशिप पाया जाता है एनर्जी और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी में। अब आप देखें यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी और एनर्जी जो है ये प्रिसाइजली दोनों बेक वक्त मेजर नहीं हो सकती। ये फंडामेंटल हकीकत है चीजों की, यानी ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं मेजर कर सकते, बल्कि ये चीजें हो ही नहीं सकती मेजर। वो उसकी एक लंबी कहानी है क्यों नहीं हो सकती, वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से उसका ताल्लुक है, वो बाद में किसी वक्त हम मौजूद बहस बना लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता। यानी एनर्जी और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बेक वक्त दोनों प्रिसाइज तरीके पर मेजर नहीं हो सकते या मुतय्यन नहीं हो सकते। तो अगर बिल्कुल खाली स्पेस होगी, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस होगी जिसमें कुछ नहीं होगा, तो एनर्जी और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा, ठीक है ना, उसके अंदर एनर्जी जीरो होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी के उसके अंदर एनर्जी की फ्लक्चुएशंस क्या हो रही हैं, उसमें क्या रेट चेंज हो रहा नहीं हो रहा, जाहिर है एनर्जी नहीं होगी तो वो भी जीरो होगा। तो बेक वक्त ये दोनों चीजें, ये फंडामेंटल कंस्ट्रेंट है कि वो नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि नथिंगनेस जो कि कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस हो या कंप्लीटली एम्प्टी कोई आप जेन में चीज ना है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है। अच्छा, अब ये नहीं कर सकती तो नेक्स्ट पॉसिबल थिंग टू नथिंग क्या है? जब एब्सोल्युटली नथिंग अगर नहीं हो सकता तो नथिंग फिर हम कहां तक जा सकते हैं, कहां से फिर हम शुरू कर सकते हैं कायनात को, नथिंग क्या करार पाएगा? तो ये चीज करार पाएगी नथिंग, द नेक्स्ट क्लोजेस्ट थिंग टू नथिंग इज अ टाइनी स्पेक ऑफ स्पेस इन अ स्टेट ऑफ मिनिमम और लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। इसको कहते हैं द क्वांटम वैक्यूम स्टेट। बड़े बड़े अल्फाज से आप घबराइएगा नहीं, कॉन्सेप्ट में आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। देखें आप अपने जहन में तसव्वुर करें कि मेरे पास ये खाली ग्लास है, ठीक है, इस खाली ग्लास में मैं इसको जूम इन करता हूं और मैं इसके अंदर छोटा सा एक स्पेक ऑफ स्पेस, छोटा सा स्पेक ऑफ स्पेस, उसको मैं जूम इन करता 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 वहां तक चला जाता हूं, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर यह होगा कि वो मैं जो एम्प्टी स्पेस को देखूंगा ना इसके अंदर, तो वो एम्प्टी होगी नहीं। उसके अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसे कि प्रिडिक्ट करता है, स्पेस बिल्कुल छोटे लेवल पर मैं चला गया, बिल्कुल क्वांटम लेवल पर, या आप इसको कह लें कि जूम इन करता 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 बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन्स के, बैक्टीरिया से भी छोटे, वायरस से भी छोटे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स के उस पर चला गया। वो जो स्पेस है उस स्पेस को हम देखते हैं तो वो एम्प्टी नहीं होती, उस स्पेस के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही होती है, एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। इसको मैं यूं भी बयान कर सकता हूं कि अगर स्पेस का छोटा सा भी जर्रा होगा तो एनर्जी स्पेस की प्रॉपर्टी है, जहां स्पेस होगी वहां पर एनर्जी उसके अंदर पाई जाएगी, मुकम्मल एम्प्टी नहीं हो सकती वो कि कोई एनर्जी ना पाई जाए, और वो एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही होती है। आपको पता है कि क्वांटम लेवल के ऊपर जो बयान किया जाता है छोटे लेवल पर, वो लेवल इस क्लासिकी लेवल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसके लॉज भी मुख्तलिफ हैं और ये दोनों आपस में मिंगल नहीं करते। यही वो ड्रीम है आइंस्टाइन की भी थी और बाकी फिजिसिस्ट की भी, इन दोनों पिक्चर्स को किसी तरह एक कंसिस्टेंट होल में हम प्रो लें, लेकिन वो हो नहीं सकता। तो हमारे आसपास भी जो एम्प्टी स्पेस है जो हमें नजर आती है वो तो जाहिर है कि एम्प्टी होती नहीं है, एयर मॉलिक्यूल्स और ये, लेकिन आप एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह सब चीजों को निकाल दें और क्वांटम लेवल पर चले जाएं तब भी वो एम्प्टी स्पेस आप नहीं आपको मिलेगी या आप बना भी नहीं सकते, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो होता है क्या कि एक छोटा सा स्पेक ऑफ स्पेस का जब आप देखते हैं, और इतना छोटा कि जो आपको मालूम है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो उनका बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स उनसे निस्पतन थोड़े से बड़े होते हैं, प्रोटॉन्स को क्वार्क्स मिलकर बनाते हैं मजीद छोटे पार्टिकल्स। तो ये जो क्वार्क्स हैं तीन जो कि प्रोटॉन को बना रहे हैं, इनके दरमियान की स्पेस है जिसको हम जेरे बहस ला रहे हैं, वो स्पेस भी एम्प्टी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर क्या हो रहा होता है, एनर्जी मौजूद होती है, वो मिनिमम एनर्जी या लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है लेकिन मौजूद होती है। उस मिनिमम एनर्जी स्टेट में क्या हो रहा होता है कि पार्टिकल्स एंड फील्ड्स, फील्ड्स आप समझ लें कि स्पेस, स्पेस और एनर्जी समझ लें आप फील्ड्स, पार्टिकल्स और स्पेस और एनर्जी स्पॉन्टेनियसली क्विवर इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस विदाउट एनी कॉज। यानी मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स बन रहे होते हैं, दो पार्टिकल्स इकट्ठे बनते हैं, एक मैटर पार्टिकल एक एंटी मैटर पार्टिकल, दोनों के मैस भी होते हैं बहुत सारी सिचुएशंस में। तो एनीवे वो बन रहे टूट रहे होते हैं, वो जब बनते हैं एक मैटर पार्टिकल होता है और एक एंटी मैटर पार्टिकल होता है, वो अनाइलेट कर देते हैं आपस में, जब वो उनका तसादम होता है तो वो अनाइलेट कर जाते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है जो मोटी सी बात समझने को कि एम्प्टी स्पेस हम बिल्कुल लो लेवल पे चले गए, वो एम्प्टी नहीं है, उसमें एनर्जी मौजूद है और पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे, बन रहे टूट रहे, बन रहे टूट रहे, बन रहे टूट रहे, और इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में वो बनकर टूट भी जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मैं इसकी अभी आपको एक विजुअल पिक्चर दिखाता हूं। तो स्टीवन हॉकिंग ये कहते हैं और ये बाकी लॉरेंस क्रॉस वगैरह भी कि देखें यूनिवर्स का हम कहते हैं कि एक बिग बैंग हुआ और फैलाव हुआ, तो उस फैलाव को आप दोबारा उसको सुकड़ने दें, पीछे लेकर चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो एक आपको जाहिर है कि जो मैंने आपको कहा कि स्पेक ऑफ स्पेस ही रह जाएगा ना आखिर में, एक पॉइंट नुक्ता रह जाएगा जो कि फुल स्टॉप से भी मिलियन 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 टाइम्स छोटा है, जो फुल स्टॉप नुक्ता होता है उससे भी छोटा, वहां से यूनिवर्स इमर्ज की हो। तो ये रीजनेबल है ज्यूम करना कि जैसे यहाँ एम्प्टी स्पेस हमारी जो होती है उसमें से पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे होते हैं, तो हमारी कायनात भी इसी तरह के पार्टिकल के तौर पर वजूद में आई होगी स्पॉन्टेनियसली, और उसके बाद वो बयान करते हैं कि वो अनाइलेट क्यों नहीं हुई। मैंने बताया ना कि जो भी जदात आते हैं वो अनाइलेट हो जाते हैं, तो कायनात अनाइलेट नहीं हुई, वो इन्फ्लेशन की वजह से अनाइलेट नहीं हुई, एकदम वो फैलना शुरू हो गई। तो जो पार्टिकल था छोटा एंटी मैटर पार्टिकल जिसने अनाइलेट करना था वो तो छोटा रह गया, ये जो है इसमें एक धमाका हो गया जिसकी वजह से ये साइज बहुत बड़ा हो गया, तो ये अनाइलेट नहीं हुई, ये डिस्ट्रॉय नहीं। तो आप देखें कि ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर कि इमर्जेंस ऑफ द यूनिवर्स वाज अ क्वांटम इवेंट, रीजनेबल, दिस इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट इट इमर्ज्ड एज अ टाइनी पार्टिकल आउट ऑफ नथिंग। तो पार्टिकल का लफ्ज गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, ये बेसिकली एक वर्चुअली ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस वजूद में आई थी, और इतनी छोटी ये स्पेस थी कि आप मतलब तसव्वुर में भी इसका लाना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटी ये स्पेस थी, बैक्टीरिया और वो तो इसके सामने जाइगेंटिक होंगे ना। पहले हमने सिर्फ और सिर्फ कोई इसकी थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन हमने कोशिश करने की हम ड्रॉ ना करें, कि हम सिर्फ उनकी बात समझने की कोशिश करें। अभी ये जहां से नुक्ते से जो बात शुरू हो रही है ये इससे भी पीछे लेकर जाएंगे स्टीवन हॉकिंग आपको, उन्होंने इस नुक्ते का टाइम भी खत्म करना है और सो टू स्पीक एक इटर्नल जो कायनात है उसकी तरफ आपको ले जाएंगे। तो एनीवे ये चीजें हम बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, हमने जंप टू कंक्लूजन नहीं करना, यानी हमने स्टीवन हॉकिंग की बात को समझना अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो अगर उसमें कोई कमजोरी है तो हम उस पर बहस करेंगे, लेकिन अगर कोई कमजोरी नहीं है तो जाहिर है कि उसको मान लिया जाएगा। तो जी आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें।
थैंक यू सर। सर असल में आपने खुद ही शायद इस बात की तरफ बता दिया कि हम आगे जाके इसे समझेंगे। असल में मेरा बैकग्राउंड मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे जो चीज़ हमेशा कंफ्यूज करती है वो ये करती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे समझ नहीं आती है, कम इल्मी है, लेकिन वो कहते हैं टाइम और स्पेस नहीं थी जब बिग बैंग हुआ। तो आपने कहा ना जैसे कि बिल्कुल हम अपने टर्म्स की स्पेक ऑफ स्पेस इन अ स्टेट, तो इतनी छोटी स्पेस फिर आपने डिफाइन भी की कि क्वार्क्स के लेवल पे जाके उनके बीच में जो जगह है तब भी वहां पे एनर्जी होगी, तो फिर टाइम और स्पेस तो हुई ना फिर सर, मतलब अगर हम इतने माइन्यूट देख रहे हैं तो टाइम और स्पेस
चीज को हम जी इस चीज को हम जेरे बहस लेकर आए, या फिक्र ना करें इंशाल्लाह ये बात वाज़े हो जाएगी।
और सर ये भी बता दीजिएगा कि ये टाइम और स्पेस का मतलब क्या होता है, मैं एक आम जुबान में ये समझता हूँ कि एक घड़ी पे आज मैं पीछे चला जाऊं तो तब भी घड़ी तो चल रही होगी, तो टाइम और स्पेस, और फिर वो क्वैक भी कहीं पड़ा ही होगा ना कहीं स्पेस में, तो दोनों चीजें मेरे जहन में एग्जिस्ट करती हैं, फिर वो क्यों कहते हैं एग्जिस्ट।
नहीं नहीं आप इसको फिक्र ना करें, ये आपके इंशाल्लाह चीजें वाजे हो जाएंगी जो जो मैं चीजों को खोलूंगा। अभी जो हम जा रहे हैं पीछे की तरफ, हम क्लोजेस्ट टू नथिंग जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बिल्कुल जब कुछ भी ना हो, ना टाइम हो ना स्पेस हो, कुछ भी ना हो, वो नथिंगनेस तो पॉसिबल नहीं है क्वांटम लॉज के तहत। यानी कायनात की बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ये है, आप इसको यूं बयान कर सकते हैं कि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो हम जा रहे हैं छोटे से छोटे लेवल पर, इस छोटे से छोटे लेवल को भी वो नथिंगनेस में कुछ फिजिसिस्ट तब्दील करेंगे, हम वो सारी पिक्चर देखेंगे। तो आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह सारी चीजें जेरे बहस आ जाएंगी। अभी मैं आपको ये नो प्रॉब्लम जी, ये तीन क्वार्क्स के दरमियान में जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हम इस लेवल पर किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये बहुत छोटे लेवल पर है। इसकी एक सिमुलेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अगर ये चल पड़े तो एनीवे, अगर ये नहीं भी चलती तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये एक मतलब ये जो चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये स्पेस है क्वार्क्स के दरमियान में, जो कि एक प्रोटॉन को बनाते हैं जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो आपको नजर आ रही है चीजें, ये इसको वीडियो चल नहीं रही, लेकिन जब ये चलेगी तो ये ऐसे आपको नजर आएंगे, बन रही टूट रही, जैसे एक फोम होता है या बबल्स होते हैं, जैसे बास टब में बबल्स बनते हैं ना, उस तरह बन रहे टूट रहे। ये जिटर्स की स्टेट में है, पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे। एनर्जी या पार्टिकल मास और एनर्जी, आपको पता है ना आइंस्टाइन की इक्वेशन के तहत एक चीज के दो परतों हैं, तो एनर्जी या पार्टिकल्स ये इसमें बन रहे टूट रहे होते हैं। वो एनर्जी बन रहे टूट रहे का क्या मतलब है, वो ये जो आप लोगों में से क्वांटम फिजिक्स जानते हैं, वो फील्ड जो है, जो क्वांटम फील्ड है, वो असल में डिस्टर्ब हो रहा होता है। एनीवे ये पिक्चर आप इसको जेहन में लेकर लाएं कि ये मूव कर रहे हैं ये जो चीजें, कभी ये छोटे हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कभी निकल आते हैं, फिर यहां से गायब होगा, वहां निकल आएगा, सो ऑन। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको अपने टाइम में देख लीजिएगा। अब मैं आपके सामने एक ओवरव्यू पेश करने जा रहा हूं कि कायनात कैसे वजूद में आई, इस तरह से बिल्कुल एक स्पेक ऑफ स्पेस से। हम ये स्टेज वन से शुरू करेंगे, स्टेज जीरो पर आपको इससे पीछे बाद में लेकर जाऊंगा अगले लेक्चर में, वो बहुत लंबी चौड़ी उसकी बहस है इस वजह से। तो स्टीवन हॉकिंग की ये जो किताब है द ग्रैंड डिजाइन, उधर से मैंने ये पिक्चर बोरो डायग्राम बोरो की है, ये आपको दिखा रहे हैं कि ये वो टाइनी स्पेक ऑफ स्पेस है, ये जिसको वो नथिंगनेस कहते हैं फिजिसिस्ट, उन्होंने रीडिफाइन किया नथिंगनेस को, ठीक है ना। जो नथिंगनेस हो सकती है वो ये टाइनी स्पेक ऑफ स्पेस है, इसके अंदर पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे, इसको कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशंस। क्वांटम फ्लक्चुएशंस लीड टू द क्रिएशन ऑफ टाइनी यूनिवर्सेस आउट ऑफ नथिंग। तो ये कोई जाहिर है कि जो एम्प्टी स्पेस है, जो जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें भी जो पार्टिकल्स बन रहे टूट रहे होते हैं, वो कोई एक पार्टिकल नहीं होता, वो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पर भी वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से बहुत सारी कायनातें बन रही टूट रही, इस तरीके से उनमें से ज्यादातर कायनातें एनाइलेट हो जाएंगी, मैटर एंटी मैटर, मैटर जो पार्टिकल जिस तरह से निकलते हैं उसकी, वो एनाइलेट कर देते हैं। लेकिन कुछ कायनातों में एब्रप्टली एक इंफिजार होगा, एक एक्सप्लोजन होगा, तो वो फैलती चली जाएंगी। तो एक कायनात नहीं वजूद में आएगी, बल्कि बहुत सारी मुख्तलिफ कायनातें वजूद में आएगी, जिसको कहते हैं कि मल्टीवर्स हाइपोथेसिस, कि बहुत सारी कायनातें वजूद में आई होंगी इस तरीके से, ठीक है ना। यानी ये नोन से अननोन पर इतलाक है, वापस जाकर तो कोई नहीं देख सकता कि क्या हुआ था शुरू में। तो जो नोन चीज है, बिल्कुल सही इस्तेमाल है, जो नोन चीज हमारे सामने आई छोटे लेवल पर, उसको अप्लाई कर दिया पूरे यूनिवर्स के ऊपर। अच्छा, इसके बाद एक और स्टेज हुई जिसमें जो क्वांटम फ्लक्चुएशन से कायनात हमारे एक जर्रे के तौर पर वजूद में आई, उसके अंदर भी ये फ्लक्चुएशन जारी रहे। इसकी इम्प्लीकेशन है फिर बाद में गैलेक्सीज वगैरह बनने के लिए, इसकी फिजोलॉजिकल इम्प्लीकेशन भी हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसको टोटली स्टेज टू को इग्नोर करेंगे, क्योंकि इस पिक्चर में ये खलते मबस पैदा करेगी, इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। बाद में अगले लेक्चर्स में आपको इसकी तरफ इशारा करके वापस मैं स्टेज टू भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आज हमने स्टेज वन कि ये क्वांटम वैक्यूम से कैसे वजूद में आई एक कायनात हमारी, बल्कि बहुत सारी कायनात है, और दूसरे क्या हुआ, ये स्टेज थ्री पर हम जंप करेंगे, कि जो जिसको स्टीवन हॉकिंग कहते हैं कि ग्रेविटी एंड क्वांटम थ्योरी कॉज यूनिवर्स टू बी क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ नथिंग, तो ये जो वो स्पेस वजूद में आई थी वो ऑलमोस्ट एम्प्टी थी, ऑलमोस्ट एम्प्टी थी, उसके अंदर मैटर पार्टिकल्स नहीं थे. मैटर पार्टिकल्स कैसे वजूद में आ गए, ये स्टेज थ्री ने इसका जवाब देना. स्टेज टू को हम स्किप करेंगे, स्टेज वन और स्टेज थ्री पर हम गौर करेंगे. इसमें मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये इवेंट इतनी तेजी से हुए हैं, इतनी तेजी से हुए हैं कि कायनात में जो कुछ होना था वो पहले 3 मिनट्स के अंदर, एक फिजिसिस्ट की किताब का नाम ये है कि फर्स्ट 3 मिनट्स, पहले 3 मिनट्स में ये सब कुछ हो गया था. पहले 3 मिनट्स में क्या हुआ, देखें ये कायनात को मैं दिखा रहा हूं कि वजूद में आने से इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ. ये आज हैं हम यहां पर 14 बिलियन ईयर्स के बाद, और ये जो क्वांटम फ्लक्चुएशन के तौर पर कायनात वजूद में आई और इन्फ्लेशन उसमें एक इंफजार हुआ, वो फटी कायनात और फटकर एक गोल्फ बॉल का साइज उसने इतना साइज एक्वायर कर लिया. और उसके बाद क्या हुआ कि कायनात जो है वो ठंडी होना शुरू हुई, और ये इन्फ्लेशन जूं जूं हो रही थी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर पैदा हुआ कायनात के अंदर नथिंगनेस से. ये भी आपको स्टेज थ्री में एक्सप्लेन करना है मैंने कि वो कैसे हुआ. कि यहां पर सिर्फ जानने की बात यह है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस और इन्फ्लेशन जो एक्चुअल बैंग है बिग बैंग का, इन्फ्लेशन का मतलब है कि बहुत रैपिड एक्सप्लोजन, वो हुआ. देखें ये खत्म हो गया इन्फ्लेशन, क्वांटम फ्लक्चुएशन होकर इन्फ्लेशन खत्म हो गया इन अ मिलियंथ 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 ऑफ अ सेकेंड में. अभी एक सेकेंड में नहीं गुजरा, यहां पर एक माइक्रो सेकेंड गुजरे तो वो जो भी एक हॉट सूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वार्क्स या एनर्जी जो भी बना था वो प्रोटॉन्स उससे बनना शुरू हो जाएंगे, फिर प्रोटॉन्स बनना शुरू हो जाएंगे उससे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो बनना शुरू होंगे. ये देखिए अभी भी एक सेकेंड मुकम्मल नहीं हुआ, 3 मिनट के बाद एटम्स वजूद में आना शुरू हो जाएंगे, हाइड्रोजन के एंड हीलियम के मोस्ट सिंपल एटम्स, और उसके बाद आप देखेंगे जो हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो पहली लाइट है वो 380,000 साल के बाद वो लाइट यूनिवर्स जो है वो रोशन हुई, लाइट पैदा हुई उसके अंदर, क्योंकि लाइट पहले वो एक डेंस फॉर्म के अंदर फंसी हुई थी, निकल नहीं सकती थी, तो वो और यही लाइट है जो आपको अभी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में नजर आती है. और ये लाइट मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी थी, ये फैलना शुरू हो गया सो ऑन, तो इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं. करते करते उसके बाद ये लाइट फिर गुम हो गई, पहली स्टार्स और गैलेक्सीज बनना शुरू हुई और सो ऑन सो फॉर्थ. तो कहने का मकसद ये जो मैं आपसे सारा ये जिक्र कर रहा हूं, ये पहले एक सेकंड में ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया जो कि इंटरेस्टिंग है कायनात की के वजूद में आने के. हम आगे बढ़ते हैं जी. स्टेज वन देखिए मैंने आपको ऐसे दिखाई थी कि ये वो प्रिमिटिव क्वांटम वैक्यूम है जिसको जो स्पेक ऑफ स्पेस है जिसको वो नथिंग कहते हैं, ऑलमोस्ट ये एम्प्टी है जो वजूद में आया. ये जैसे कोका कोला होती है उसके अंदर बबल्स बन रहे टूट रहे होते हैं ना, तो बाय एनालॉजी आप ऐसे समझे कि बहुत सारी कायनातें बन रही टूट रही थी, कुछ कायनातें इसमें उनमें इंफजार हुआ और वो फैलना शुरू हो गई. तो इस तरीके से क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग वो बयान करते हैं. अब यहां से हम दूसरी उस पर जंप लगाएंगे, बल्कि तीसरी स्टेज पर, जो इसके बाद इसने इन्फ्लेट करना है. एनाइलेट नहीं हुई क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन हुआ. देखें जो चीज वजूद में आई थी, मैं दोबारा से कहूं कि वो इसेंशली एम्प्टी थी. ये एक सेंटीमीटर का मिलियंथ 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 हिस्सा था जो कि वजूद में आया था, 10^-33 सेंटीमीटर स्पेस वजूद में आई थी. अभी ये क्वांटम पार्टिकल के तौर पे वजूद में आई है. अब देखें इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ एक धमाका और एक्सप्लोसिव इसकी एक्सपेंशन हुई, और ये जो इन्फ्लेशन हुआ या धमाका हुआ इसकी दो पेक्यूलर प्रॉपर्टीज हैं. एक तो ये कि धमाका इतने जोर का था कि आज तक उस धमाके की वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है और किसी चीज ने एक्सपेंशन कॉज नहीं की. इस इन्फ्लेशन ने शुरू में जो एक्सपेंड ये धमाका हुआ उसकी वजह से फिर ये जो इन्फ्लेशन प्रोड्यूस कर रही थी चीज, जो एक्सप्लोसिव मैटर था वहां पर, वो खत्म होना शुरू हो गया. अभी आपको बताता हूं कैसे. तो उसके बाद इनर्शिया की वजह से एक्सपेंशन जारी रही जो अब तक हो रही. तो क्या हुआ, क्वांटम पार्टिकल एक पैदा हुआ. ये देखें ये जो आपको पार्टिकल से नजर आ रही है असल में एम्प्टी स्पेस है. ये एम्प्टी स्पेस, इसमें एम्प्टी स्पेस में धमाका हुआ और بہت سارا میٹر وجود میں آیا, تو یہ کیسے سب ہو گیا؟ Where did all the matter come from during inflation? کائنات تو ایمٹی تھی, میٹر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ہم جانتے ہیں جو لا آف انرجی کنزرویشن ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انرجی جو ہے اٹ کین نائدر بی کریٹڈ نور ڈسٹروائڈ. انرجی بس ہوتی ہے اور اپنی حالتیں تبدیل کرتی ہے. انرجی نئی نہ کریٹ کی جا سکتی ہے نہ ہی انرجی کو ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے. انرجی بس ہوتی ہے ایک کلوز سسٹم کے اندر, کائنات کو ہم کلوز سسٹم مانتے ہیں, اور وہ انرجی جو ہے مختلف حالتیں تبدیل کر سکتی ہے, کبھی بھی اس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا. اور وہ جو انرجی ہے بس وہ ہوتی ہے, اس کو پروڈیوس بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ انرجی جو شروع میں ہوتی ہے وہی آخر تک سسٹم کے اندر حالتیں تبدیل کرتی رہی. میٹر کے اندر انرجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں یہ پتہ ہے. تو وہ جو میٹر پارٹیکل جو وجود میں آئے ان کی انرجی کہاں سے آ گئی؟ انرجی تو کریٹ نہیں ہو سکتی, میں نے کہا, تو انرجی کہاں سے آ گئی؟ انرجی کین بی نائدر کریٹڈ نور ڈسٹروائڈ, اٹ اونلی چینجز فارم. تو اسٹیون ہاکنگ نے اس کا یہ جواب دیا, باقی فزسسٹس بھی, کہ اصل میں ایلن گوس نے اس کا, جو انفلیشنری تھیوری کے فادر ہیں, انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ گریویٹی کی وجہ سے اتنا زیادہ میٹر پیدا ہو گیا اور انرجی بھی اس کے لیے نہیں چاہیے. میٹر پیدا ہو گیا بہت زیادہ کائنات میں, اس کے لیے انرجی میں نہیں چاہیے. کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے نا یہ آپ کو, ٹھیک ہے نا, کہ یعنی میس کوئی بھی ہو اس میں انرجی ہوتی ہے. تو میس بہت زیادہ وجود میں آیا یا میٹر وجود میں آیا بہت زیادہ اور اس کے لیے انرجی بھی درکار نہیں. جی آپ پوچھیں.
تو پھر یہ ڈارک انرجی کیا ہوگی, کیونکہ
نہیں ڈارک انرجی, تھوڑی سی اب ہم جمپ کر گئے ہیں کافی آگے. بیسیکلی ڈارک انرجی وہی کام کرتی ہے جو اس میٹر نے کیا جس نے انفلیشن کاز کی. ڈارک انرجی اب بھی ایکسیلریشن ہو رہی ہے کائنات کی ایکسپینشن میں ڈارک انرجی کی وجہ سے. یہ میکینزم وہی ہے, آپ اپنے ذہن میں رکھیں, وہی میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ ایکسپلوژن ہو کیسے گیا, یہ انرجی شروع میں کتنی پریزنٹ تھی اور وہ کس طرح سے پھر نئی انرجی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ انرجی جو ہے وہ نئی وجود میں آئی, نئے پارٹیکلز وجود میں آئے. تو ہوا کیا, وہ کیسے وجود میں آئے انرجی کے بغیر؟ اس کا ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ انرجی جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو نہیں ہوتی, بلکہ جو گریویٹی ہے وہ نیگیٹو انرجی پروڈیوس کرتی ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس میں آپ کے پاس 100 روپے پڑے ہوئے, تو وہ بینک اکاؤنٹ 0 بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو -100 میں بھی جا سکتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, اکاؤنٹ آپ کا مائنس میں چلا جاتا ہے, آپ بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں جب, تو اکاؤنٹ مائنس میں ہوتا ہے. تو یہ جو میٹر ہے اس کو آپ سمجھے کہ یہ جو آپ کے پاس کیش پڑا ہوا ہے اس کو ڈیپکٹ کرتا ہے, اور گریویٹی جو ہے یہ ڈیٹ کو یا آپ جو مائنس میں چلے گئے اس کو ڈیپکٹ کرتی ہے. ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے. تو +100 اور -100 اگر یہ برابر ہوں گے تو آنسر کیا ہوگا؟ 0. یہی ہو رہا ہے کائنات میں. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, جو لوگ نیوٹن کی گریویٹی سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ پکچر سفائس کرتی ہے, جو آئنسٹائن کی گریویٹی کی پکچر سے جن کو سمجھ ہے اس کی, وہ اس پکچر کو بے شک دیکھیں. ان دونوں ہی پکچرز میں گریویٹی جو ہے وہ انرجی ڈیفیسٹ یا نیگیٹو انرجی پیدا کرے گی. یہ بڑا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے, لیکن یہ اب سمجھ میں آ جائے گا تو بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی.
تو یہاں پہ گریویٹی واپس پھینک رہی ہے, الٹا ریئیکٹ کر رہی ہے, یعنی کہ اپنی طرف کھینچ نہیں رہی بلکہ دور پھینک رہی ہے, یہی کانسیپٹ ہے, میں صحیح سمجھوں؟
جی جی, میں اس کو بھی ایکسپلین کرنے لگا تھا. جی یہی کانسیپٹ.
تھینک یو.
یہ جی انرجی جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, دیٹ از دا کیپیسٹی ٹو ڈو ورک. انرجی کسی کام کرنے کی قابلیت, جیسے کہ ایک سیل کے اندر, بیٹری سیل کے اندر یہ انرجی ہوتی ہے, وہ کیا کرتی ہے, وہ کام پروڈیوس کرتی ہے. وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں گھڑی کو چلانے کے لیے, ریموٹ کنٹرول کو, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو انرجی کی کیپیسٹی ٹو ڈو ورک ہے. میٹر کی انرجی ہم آئنسٹائن کی یہ جو ایکویشن ہے ایکوئلز ایم سی اسکوائر اسپیشل ریلیٹیویٹی سے ہم جانتے ہیں کہ جو میٹر کا یا میس جہاں پر بھی ہوتا ہے اس میں بہت ساری انرجی ہوتی ہے. ایٹامک بم میں کیا ہوتا ہے, وہ جو میٹر کے اندر یا میس کے اندر انرجی پھنسی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں. تو چھوٹا سا ایک مسائل ہوتا ہے جو کہ تباہی پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. तो मैटर के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है मैटर के अंदर। तो मैटर के अंदर यानी पॉजिटिव एनर्जी होती है, मैटर की एनर्जी कुछ करती है, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव करे चाहे वो कंस्ट्रक्टिव करे। एटॉमिक बॉम्ब वाली सूरत में वो डिस्ट्रक्टिव काम करती है, लेकिन काम तो करती है। ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल इससे उलट कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटी क्या करती है, देखें ये जो यहां पर हम जुपिटर को ले लेते हैं, ये एक ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर बाउंड है, ये सूरज के गिर मूव कर रहा है, ठीक है। और ये क्यों मूव कर रहा है, आप इसको न्यूटोनियन पिक्चर ले लें, इसकी ज्यादा आसान है कि वो एक अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये उसके गिर घूम रहा है। अब मुझे इसको इस सिस्टम से जुदा करने के लिए, इसको प्लक आउट करने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर ये इस सिस्टम में ना होता तो मुझे कोई एनर्जी इसमें ना लगानी पड़ती, इसकी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती जो मैस से आती है। लेकिन क्योंकि अब ये ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम का हिस्सा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बजाय इसके कि ये मेरे लिए कोई काम करे, मुझे इसको प्लक आउट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्योंकि सन की अट्रैक्शन, जैसे दो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो मैग्नेट्स आपस में वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो क्या करना पड़ता है, मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है उनको अलहदा करने के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है कि ग्रेविटी जो है वो एनर्जी डेफिसिट प्रोड्यूस करती है, बजाय ये कि वो कोई काम करे हमारे लिए, वो काम करवाती है हमसे, सो टू स्पीक, कि हम उसको प्लक आउट करने के लिए उस पर काम करें। तो क्या हो गया, मैटर की जो समझने वाली बात है मोटी सी, वो ये है कि मैटर की पॉजिटिव एनर्जी और ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी, ये दोनों बैलेंस आउट हो जाती हैं और एनर्जी पीछे क्या बचती है, जीरो एनर्जी बचती है। अभी मैं आपको इसको, इस आइडिया को इन्फ्लेशन के साथ जोड़ता हूं। देखें जैसे इसको स्टीवन हॉकिंग ने बयान किया, मैं वो पढ़ देता हूं। सिंस ग्रेविटी हैज नेगेटिव एनर्जी ऑन द स्केल ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ द मैटर कैन बी बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी। वही बात जो मैंने आपसे बयान की, तो इसका मतलब क्या है, जिसको मैंने आगे बयान किया कि दिस हैज एन एस्टोनिशिंग इम्प्लीकेशन, द पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर कुड बी कैंसल्ड आउट बाय द नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी, दस मैटर पार्टिकल्स कुड स्पॉन्टेनियसली कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द यूनिवर्स विदाउट रिक्वायरिंग एनी एनर्जी। यानी मैटर पार्टिकल्स के बनने से पहले और बाद में एनर्जी जीरो होगी। जैसे आप मॉनेटरी टर्म्स में इसको लें तो 100 रुपए हैं, उसको आप 200 कर दें और नेगेटिव में अपने डेट को भी 200 कर दें, कैश को 400 करें, डेट को भी 400 करें, टोटल क्या होगा, जीरो होगा। तो जितना मर्जी आप पॉजिटिव उसमें करते रहें, डेट को बढ़ाते जाएं तो टोटल जीरो ही रहेगा। तो ये इस तरह से टोटल जो एनर्जी है वो जीरो रही पार्टिकल्स के बनने से पहले और बाद में, इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल। In other words, the net energy of the universe before and after the spontaneous formation of all the matter particles could remain zero, conserved, isko kehte hain. And therefore, there is no restriction on the creation of the whole universes. Because there is a law like gravity, the universe can and will create itself from nothing. Okay, isko jo Alan Guth hain, unhone apne ek lecture mein aise bayan kiya hai ki dekhen, matter or radiation, ya matter aur aap isko energy keh lein, इसकी पॉजिटिव एनर्जी होती है और जो ग्रेविटी है इसकी नेगेटिव एनर्जी होती है। जितनी एनर्जी आप बढ़ती जाएगी कायनात में, जितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी उतने ही ग्रेविटी की नेगेटिव एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। तो पॉजिटिव एनर्जी जो मैटर की और रेडिएशन की, क्योंकि मैटर और रेडिएशन क्या करते हैं, ये जहां पर भी पाए जाएंगे ये स्पेस को बेंड करेंगे या ग्रेविटी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो बेंडिंग ऑफ स्पेस, आइंस्टाइन की ग्रेविटी की पिक्चर, एनीवे ये जहां पर होंगे ये ग्रेविटी प्रोड्यूस करेंगे अपनी हैवीनेस की वजह से। तो या आप न्यूटोनियन पिक्चर में इसको ले लें कि दो मैसेज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं आपस में, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस करते हैं, तो जब भी मैटर होगा वो ग्रेविटेशनल एनर्जी उतनी ही प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा कि मैटर को मैं जितना मर्जी इजाफा करता रहूं, साथ साथ नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनर्जी पैदा होती रहेगी और दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, जीरो। इसको एलन गूफ कहते हैं कि यूनिवर्स इज अ फ्री लंच, कि यूनिवर्स मुफ्त में, जिसको आप अपनी वो जुबान में अक्सर कहते हैं कि जी ये मुफ्ता है, तो सो टू स्पीक ये एक मुफ्त में हमें कायनात इज अ फ्री लंच कि ये इसके लिए इसके बनने के लिए हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए थी, ये स्पॉन्टेनियसली एक स्पेक ऑफ स्पेस के तौर पर वजूद में आई और उसके बाद फिर फैलना शुरू हुई, फैलाव में नया मैटर पैदा हुआ एनर्जी की किसी जरूरत के बगैर। अच्छा अब मैं इन्फ्लेशन को आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, जो वो डार्क एनर्जी की भी बात कर रहे थे, वो इन्फ्लेशन बेसिकली डार्क एनर्जी से ही ड्रिवन होती है। देखिए पहले 32 सेकेंड्स में क्या हुआ, बल्कि इसको फर्स्ट -32 सेकेंड नहीं कहना चाहिए, इन्फ्लेशन जो है ये यहाँ पर एक टाइपो है, इन्फ्लेशन जो है इससे भी छोटे वक्त में होकर खत्म हो गई। तो जो स्पेक वजूद में आया था उसको अब बेबी यूनिवर्स मैं कह रहा हूँ, वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में एकदम वजूद में आया और विद इन नो टाइम बेसिकली, उसको हम बेबी यूनिवर्स कह रहे हैं। यानी वो अब ये ना समझे कि यूनिवर्स है, वो एक एम्प्टी स्पेस है, अभी उसके अंदर कोई मैटर शैटर नहीं है। उसकी एक्सट्रीमली फास्ट एक्सपेंशन हुई, तो वो एक इलेक्ट्रॉन से भी छोटे साइज से एक ग्रेप फ्रूट का ये गोल्फ बॉल का साइज, इतने साइज में कई गुना ज्यादा, उसके मतलब लाखों करोड़ों आप हम शुमार में नहीं आ सकते कि ये कितनी फास्ट एकदम यकमुश्त ऐसे हुआ कि वो कुछ नहीं था और अभी एक सेकंड भी नहीं गुजरा कि एक कायनात एक बॉल की सूरत में वजूद में आ गई। ये उसके बाद ये एक्सपेंशन जो हुआ, एक स्पेक जब बना था उसमें एक्सपेंशन होता, ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ कि इस स्पेक के अंदर अ पैच ऑफ एन अनयूजुअल मैटर मौजूद था जिसको रिपल्सिव ग्रेविटी मटेरियल कहते हैं या फ्यूल ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। ये रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर क्यों मौजूद था वहां पर, इसकी भी पीछे मुख्तलिफ थीरीज हैं, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, वो अगले लेक्चर में कहीं देख लेंगे। तो ये वो एक स्पेक वजूद में आई, उस स्पेक के अंदर एक बहुत ही छोटा सा, उस स्पेक पहले छोटा था उसके भी एक बहुत ही छोटे हिस्से में, तो ऑलमोस्ट नथिंग हो गया, एक ऐसा मैटर मौजूद था जो आम मैटर जैसा नहीं है। और आइंस्टाइन की जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है, जनरल रिलेटिविटी, वो प्रिडिक्ट करती है कि ऐसा मटेरियल एक्सट्रीम सिचुएशंस में होना चाहिए, तो वो मटेरियल वहां पर मौजूद था और वो मटेरियल एक स्पेक के अंदर था और उसके अंदर मैस इतना ज्यादा था कि वो चांद से भी ज्यादा भारी था, लेकिन था वो एक, यानी बिल्कुल एक स्पेक के अंदर महसूर था, क्योंकि वो नेगेटिव या रिपल्सिव ग्रेविटी प्रोड्यूस करता था। नॉर्मल मैटर क्या होता है इसमें और उस रिपल्सिव ग्रेविटी मटेरियल में एक फर्क है। नॉर्मल मैटर जैसे मैंने आपको कहा अट्रैक्टिव ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है, अगर नॉर्मल मैटर सूरज का है तो वो मैटर को बाकी जमीन को जुपिटर वगैरह को करीब लेकर आएगा और एक सिस्टम है वो बाउंड हो जाएगा। जो नेगेटिव ग्रेविटी मटेरियल है वो इन्फिजार का बायस बनता है, वो जैसे एक एक्सप्लोजन होता है वो इस तरह से नॉर्मल ग्रेविटी नॉर्मल मैटर की अट्रैक्ट करती है। ये वाला जो जिसको जो लोग क्वांटम फिजिक्स को जानते हैं आप समझ लें कि ये फॉल्स वैक्यूम है जिसके अंदर एनर्जी मिनिमम एनर्जी से ऊपर की मौजूद है, और ये फॉल्स वैक्यूम जो है अनस्टेबल है और ये रिपल्सिव ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है क्योंकि एक्सट्रीम सिचुएशन है ये, एनर्जी डेंसिटी इतनी हाई है एक्सपेक्ट के अंदर कि ऐसा होना चाहिए अकली तौर पर। तो उसमें इन्फिजार, उस मटेरियल में बेसिकली इन्फिजार हुआ और उस मटेरियल ने बजाय चीजों को करीब लाने के एक्सप्लोड किया, बाहर की तरफ पुश किया, इसको नेगेटिव प्रेशर भी आप कह सकते हैं। एलन गूथ ने ये एनर्जी ड्रॉ की है, जैसे आप वैक्यूम क्लीनर से ना किसी चीज को आप सक करते हैं ना बाहर की तरफ बहुत तेजी से, तो ये नेगेटिव प्रेशर ये करता है। जो पॉजिटिव प्रेशर है वो आप देखें ना कि प्रेशर आपको महसूस होता है, आपके ऊपर कोई हवा का प्रेशर है या कुछ भी है, आप पे प्रेशर महसूस होता है, वो आपको अंदर की तरफ वो आप आपको यानी क्या कहते हैं कि स्क्वीज करेगा। ये नेगेटिव प्रेशर है उसके बिल्कुल उलट, ये बाहर की तरफ फैलाव का सबब बनेगा। तो देखिए एलन गूस ने इसको कैसे बयान किया, जो कि फाउंडर ऑफ थ्योरी के, व्हेनेवर अ नॉर्मल मटेरियल एक्सपेंड्स इट्स डेंसिटी गोज डाउन बट दिस रिपल्सिव ग्रेविटी मटेरियल बिहेव्स कंप्लीटली डिफरेंटली, एज इट एक्सपेंड्स द डेंसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, that means that the total amount of mass contained in the region increasing during inflation increased during inflation by a colossal factor. wo isko thoda sa technical tarike se unhone yahan par bataya hai ki dekhen normal ek matter hai ye glass pada hua hai aur इसके इर्द गिर्द की स्पेस जो है वो एक्सपेंड होती चली जा रही है। तो क्या होगा कि डेंसिटी, डेंसिटी हम क्या कहते हैं कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम अब बढ़ाते जाए, कायनात को एक्सपेंड कर देना, स्पेस बढ़ाते जाए और ये इतना ही इसका मैस रहे, तो क्या होगा कि इसकी डेंसिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम सॉरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे तो जाहिर है कि इसकी एनर्जी 5 kilojoules सो टू स्पीक अगर है, और मैं इसको वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूँ, स्पेस बढ़ाते बढ़ाता जा रहा हूँ, तो स्पेस 10 से 20 कर दूं, तो आप देखें ना कि यही 5 पहले 10 से डिवाइड होगा, या इसको 20 पर डिवाइड करूं या 30 पर डिवाइड करूं, तो ये इसकी डेंसिटी नीचे जाती रहे, ठीक है। लेकिन ये जो रिपल्सिव ग्रेविटी मटीरियल था, इसकी एक बड़ी पेक्यूलियर प्रॉपर्टी थी, खास प्रॉपर्टी थी, एक तो इसने इन्फ्लेशन कॉज की, इसकी ग्रेविटी नॉर्मल ग्रेविटी नहीं थी, ठीक है। दूसरे पेक्यूलियर प्रॉपर्टी यहां पर उन्होंने बयान की है कि जब ये एक्सपेंड हुआ तो इसकी वॉल्यूम अगर बढ़ता जाता और ये उतना ही रहता ये जितना था, तो जाहिर है कि ये गैलेक्सीज वगैरह का मटेरियल हमारे पास मौजूद ना होता, सिर्फ इतना मटेरियल था उसके अंदर कि एक चांद वजूद में आ सकता है या दो चांद वजूद में आ सकते हैं। अब वो जब जब ये स्पेस जो है वो इंक्रीज हुई है, तो उसके साथ साथ ये मटेरियल भी क्लोजली इंक्रीज हुआ है, सेल्फ रेप्लीकेट हुआ, डबल होता है। इसको जो लोग क्वांटम वैक्यूम को जानते हैं वो समझ लें कि ये स्पेस की अपनी एनर्जी है, जो कि जब स्पेस इंक्रीज हो रही है तो साथ साथ ये एनर्जी भी पैदा होती चली जा रही है। तो इसने क्या किया कि जब ये इसने अपनी डेंसिटी बरकरार रखी, स्पेस एक्सपेंड हो रही है, इसकी डेंसिटी बरकरार है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर, मैसिव सेल्फ रेप्लिकेशन, के ये इसने अपनी तादाद में बेतहाशा इजाफा की। अभी कायनात एक गोल्फ बॉल के साइज की है, आप देखें जब इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी और इसमें इजाफा भी खत्म हो जाएगा, तो इतना छोटा स्पेक जिसमें चांद जितनी उसकी मैसिव था वो, अब गोल्फ बॉल के साइज में वो सारा का सारा मैटर पैदा हो चुका है। यहां से आगे आपकी जो नॉर्मल पिक्चर है कि यूनिवर्स एक्सपेंड करती जाएगी, जिसको आप बिग बैंग कहते हैं, वहां से पिक्चर मिल जाएगी और वो जो बिग बैंग मॉडल है उसके साथ मर्ज हो जाएगी पिक्चर। तो ये बिग बैंग से पहले क्या हुआ, बिग बैंग को किसने कॉज किया, ये उसकी उसकी एक थ्योरी इन्फ्लेशन। तो टोटल एनर्जी लेकिन क्या हुई, वो कंजर्व रही डिस्पाइट नॉर्मल सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर, क्योंकि ग्रेविटी चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, वो नेगेटिव किरदार अदा करती है, नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो टोटल एनर्जी जो है वो जीरो रही, पॉजिटिव एनर्जी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिव मटीरियल और उसकी नेगेटिव ग्रेविटेशन एनर्जी, आंसर आएगा जीरो। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यह हुआ कि ये पार्टिकल अनस्टेबल था, जैसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, अनस्टेबल होते हैं, वो डिके करते हैं, तो ये पार्टिकल डिके करना शुरू किया इसने आहिस्ता आहिस्ता। तो जब इसने डिके करना शुरू किया तो ये जो आम मैटर पार्टिकल्स हैं उनमें डिके करके, और वो आम मैटर पार्टिकल्स फिर जाहिर है कि अट्रैक्टिव ग्रेविटी प्रोड्यूस करते थे, तो उन्होंने जितना गैसेस थी उनको, गैसेस जाहिर है कि एनर्जी होती है उनके अंदर, तो वो गैसेस हो या मैस हो या जो भी चीज हो, वो अट्रैक्टिव जब ग्रेविटी उसकी होगी तो वो मैस को इकट्ठा करेगा आपस में, तो जुड़ना शुरू होंगी चीज। तो ऑल द यूनिवर्स पूरी एक्सपेंड होती रही, लेकिन लोकली जो है वो डेंस मटेरियल की वजह से उसमें स्टार्स और गैलेक्सीज बनना शुरू हो गए। तो ये कायनात की इन अ नटशेल अभी पूरी एक पिक्चर बन जाती है। देखें मैं इसको आपको ये दोबारा दिखा दूं ये इन अ बिगर स्केल, ताकि आपकी नजर से वो ओझल ना हो, डिटेल्स में गुम ना हो जाए। कहां गई जी, ये है जी, देखें ये यहां पर क्वांटम फ्लक्चुएशन हुई, एक स्पेस वजूद में आई और उसके बाद इन्फ्लेशन हुई, वो फैलती चली गई, और इन्फ्लेशन के दौरान सारे मैटर, जितना मटेरियल हमें चाहिए कायनात के अंदर जितना आज मौजूद है, वो बन गया यहां पर। और उसके बाद फिर ये इनर्शिया की वजह से इन्फ्लेशन के बाद भी, हालांकि वो इन्फ्लेशनरी मैटर खत्म हो गया लेकिन एक्सपेंड करती गई, और उसके बाद फिर वो जो जी ग्रेविटी मटेरियल, जो नॉर्मल ग्रेविटी मटेरियल पैदा हुआ, उसने क्लस्टर्स बनाना शुरू किए, और करते 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 ये फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज वजूद में आना शुरू हो गया। दरमियान की पिक्चर मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी देखें मैं इसका आपको एक रीकैप देता हूं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि और बस कितना वक्त बचता है। ये पिक्चर लेकिन अभी जारी है, अगले लेक्चर में मैंने इसको मजीद खोलूंगा आपके सामने, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अगले लेक्चर में मैं इससे पीछे लेकर जाऊंगा इस पिक्चर को, इस पिक्चर को मजीद नहीं खोलूंगा, इसको आप अपने वक्त में पढ़ सकते हैं, मैं आपको रेफर कर दूंगा लिटरेचर की तरफ। तो हुआ क्या, देखें जैसे बबल्स बनते हैं बास के अंदर, वो आप पिक्चर लेकर आए बहुत छोटे से स्पेक ऑफ स्पेस के अंदर जो कि ऑलमोस्ट नथिंग है, उसके अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशंस के जरिए से मुख्तलिफ कायनातें पैदा हो सकती थी, तो हमारी कायनात भी ऐसे पैदा हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो एक स्पेक ऑफ स्पेस पैदा हुआ था उसके अंदर एक छोटा सा मटेरियल, एक पैच मौजूद था, छोटा सा पैच मौजूद था जिसके अंदर रिपल्सिव ग्रेविटी मैटर पाया जाता था। ये मैटर इसको नहीं कहना चाहिए, ये बड़ी अजीब सी एक चीज थी जो प्रिडिक्ट करती है हमारी साइंटिफिक थीरीज, खासतौर से जनरल रिलेटिविटी की, उसको होना चाहिए। इसने क्या किया, ये फटा, इसके फटने से क्या हुआ कि इनॉर्मस सेल्फ रेप्लिकेशन हुई इस मटेरियल में। इनॉर्मस जब इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन हुई तो नया, इसका नया मटेरियल भी वजूद में आया। वो मैंने आपको दिखाया था कि वो एनर्जी के बगैर कैसे वजूद में आ गया, यानी एनर्जी तो शुरू में सिर्फ चांद जितनी थी, तो बाकी तमाम मटेरियल के लिए कहां से वजूद में आ गई, इसलिए हमने ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का बीच में कॉन्सेप्ट लेकर आया। ठीक है, ये हो गया और उसके बाद लो एंड बिहोल्ड ये डिके हुआ और ये तमाम काम यहां पर हो चुका है कायनात के फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में। उसके बाद जो नॉर्मल एक्सपेंशन इसकी होती रही, बल्कि यहां पर नॉर्मल नहीं है, यहां पर फिर बड़ी फास्ट एक्सपेंशन होगी, तो स्लो डाउन आहिस्ता आहिस्ता होती है एक्सपेंशन, स्लो डाउन होना शुरू हुई इसकी एक्सपेंशन। और अभी एक्सपेंशन जो है वो कुछ अरसे से डार्क एनर्जी का उन्होंने जिक्र किया, वो इसी किस्म का मटेरियल जो है, देखें टग ऑफ वॉर जारी है ना, इस किस्म का जो मटेरियल था उसने बाहर की तरफ एक्सप्लोड किया और जो नॉर्मल मटेरियल है वो अंदर की तरफ पुश करता है, तो एक्सपेंशन को वो स्लो करता है। तो इस बाहर की तरफ और अंदर की तरफ का एक टग ऑफ वॉर था, यानी जैसे रस्साकशी होती है, तो यहां पर कम से कम ग्रेविटी इस हद तक विन कर गई कि उसने लोकली कुछ क्लस्टर्स जो है ना गैलेक्सीज वगैरह बनाने शुरू कर दिए, उसकी वजह से बनना शुरू हो गई, लेकिन टोटल में एक्सपेंशन जारी रही। और लेकिन एक्सपेंशन स्लो होती गई होती गई होती गई, जो जो ये जो ग्रेविटी बाउंड सिस्टम्स हैं ये वजूद में आते गए और इनकी वजह से जाहिर है कि वो स्लो होती गई। लेकिन अब कुछ अरसे से ये इस किस्म का जो मटेरियल है जो कि सारा का सारा डिके नहीं किया था, बैकग्राउंड में मौजूद था, ये अब भी जो स्पेस है उसके अंदर मौजूद होता है, तो वो मटेरियल जो है उसमें ये डाइल्यूट नहीं होता है इतने आराम से जितने आराम से दूसरा मटेरियल होता है। तो ये इन इस टग ऑफ वॉर में फिर ये मटेरियल जो है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होता है और ये प्रसिस्ट करता है, तो इसकी वजह से पिछले 4-5 साल से फिर जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स की वो बहुत तेजी से होना शुरू हो गई है, दोबारा एक्सेलरेशन हो गई है। इस बात की वजह से डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसी को कहते हैं, इसी की वजह से नोबेल प्राइज भी मिला था लोगों को। ये खैर इससे दूर चली जाती है बात, ये क्वेश्चन हुआ था तो मैंने थोड़ा सा उसको बयान कर दिया, इसको आप बाकी हजरात अपने जहन से निकाल दें, गलते मबस का बायस बनेगी ये बात, यानी जो बात आपको बतानी थी वो बस यहाँ पर मुकम्मल हो गई। और अभी जो मैंने आपको सारी पिक्चर प्रेजेंट की है इसको मैं अपनी इस किताब के अंदर, ये अलमारिज से अवेलेबल होगी आपको प्रिंट फॉर्म में, इसके अंदर मैंने ये सारा पिक्चर खोल दिया, ये जो आपके सामने बयान की। तो इसमें अब ये है कि ये काम आगे बढ़ रहा है, इस किताब का सेकेंड एडिशन मेरे पेश नजर था, लेकिन सेकेंड एडिशन में मैं सिर्फ ये स्टीवन हॉकिंग का ये मुकदमा या न्यू फिजिक्स का नहीं, बल्कि एक वाइडर चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं जिसमें हम फिजिक्स बेस्ड एथियज्म, बायोलॉजिकल बेस्ड एथियज्म, इसको समझेंगे, इनकी थियरीज को समझेंगे, ये जो मैंने बयान किया कि हम पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे वो क्या है इसको समझेंगे, और उसके बाद फिर हम इसका एक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसकी साइंस के लिहाज से इसमें क्या कमी बेशी है, क्या है और क्या नहीं है। तो इसमें क्या होगा, फिजिक्स बेस्ड, बायोलॉजिकल बेस्ड, एवोल्यूशनरी बेस्ड एथियज्म, और जो माइंड और बॉडी प्रॉब्लम है, रूह का वजूद है नहीं है, वो सारी चीजें, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा काम इस सब में। और फिर मजहब का बुनियादी मुकदमा इस किताब का अभी भी लास्ट चैप्टर है, एपिलोग के तौर पर वो मौजूद है, तो वो भी मौजूद रहेगा। और इसमें कुरान मजीद से बेसिकली हम कंपेयर कंट्रास्ट करेंगे कि कुरान मजीद जिस थियोलॉजी की बात करता है, क्या वो रद्द होती है इस सारे पिक्चर से, या क्या होता है क्या। तो हम यानी फिर इसका एनालिसिस करेंगे इम्पार्शियल किस्म का, एक कि क्या इससे इनकार हुआ और क्या इनकार नहीं हुआ, क्या पिक्चर बनती है। और उसके बाद फिर हम जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, जो कि मजहब पर एतराजात किए जाते हैं, मिसाल के तौर पर दुनिया में इतनी तकलीफ क्यों पाई जाती, इंसान या हमारे कायनात को स्पेशल तो नहीं है। मजहब तो कहता है कि इंसान बड़ी एक स्पेशल, एक अशरफुल मखलूकात में से एक है और बड़ी स्पेशल है, तो उसका फिर क्या सूरत हाल है। और ये जो डिजाइन है इसको तो एक्सप्लेन कर दिया इवोल्यूशनरी थ्योरी ने, तो ये हम सारी चीजें। और फिर हु मेड गॉड, ये भी क्वेश्चन खास तौर से एक चैप्टर में हम मुकम्मल इस किताब में डिस्कस करेंगे। अभी ये किताब में ब्रीफली मौजूद है, नेक्स्ट एडिशन जब इस किताब का आएगा तो ये सब चीजें एनकम्पस करेगा। अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे, मेरे ख्याल है इसके 3 से 4 लेक्चर्स होंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, हॉकिंग हार्टल्स नो बाउंड्री प्रपोजल, के हॉकिंग ने अभी स्टेज 1 से पीछे ले जाकर टाइम से भी आपकी जान छुड़वा दें। वो कहेंगे कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, तो व्हाट केम बिफोर द बिग बैंग, ये क्वेश्चन बेसिकली एक नॉन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये उनका कहने का मकसद होगा। और वो एक पूरी थ्योरी डेवलप करेंगे जिससे टाइम जो है उससे आपकी जान छुड़वा देंगे। इफ इट्स गुड फॉर यू, इफ यू आर एन यू नो, और इट्स बैड, आई डोंट नो, लेकिन भारत अच्छा। फिर कुछ फिजिसिस्ट ने टाइम स्पेस हर चीज को खत्म किया है, जो विलेंकन वगैरह हैं, और वो कहते हैं कि एक क्वांटम क्या उसको बोलते हैं कि जो हाँ क्वांटम टनलिंग के तरीके पर कायनात जो है वो एब्सोल्युटली नथिंगनेस से कैसे वजूद में आ, तो वो फिर हमें ले जाएगी कि वो बयान करते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो मौजूद थे, और लॉज ऑफ फिजिक्स ने इस तरह की कायनात एब्सोल्युटली नथिंग जैसे वह वजूद में आ गए। तो हम देखेंगे कि पिक्चर को हम और पीछे लेकर जाएंगे और देखेंगे कि हॉकिंग हार्टल नो बाउंड्री प्रपोजल और लॉज ऑफ फिजिक्स, यहां तक जब बात चली जाती है तो फिर खुदा के वजूद के बारे में थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन इसकी क्या है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं स्टीवन मम्फर्ड, ये ब्रिटिश फिलोसफर हैं, मैंने इनसे ये लॉज ऑफ फिजिक्स पढ़े हुए हैं, और इनकी थियरी और जनाब जावेद अमगामी साहब की जो थियरी है लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में, वो कि वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल सेम थियरी है। तो मैंने ये दो मेरे साथजा हैं, कोलैबोरेटिव काम ये करते हैं, ये नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज से हैं रानी, और ये स्टीवन मम्फर्ड हैं, ये दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं, ये हेड ऑफ मेटाफिजिक्स हैं। एनीवे इनकी जो ये किताब है और इनकी सुपरविजन के अंदर मैंने ये लॉज ऑफ फिजिक्स वाला जो काम किया था वही इस किताब में मैंने फिर इनकॉर्पोरेट किया, और उसी की बेसिस पर बहुत सारी हमने जो खलते मबस होता था फिजिक्स वगैरह के अंदर वो हमने उसको दूर किया। और आप देखेंगे कि लॉज ऑफ फिजिक्स इतना बड़ा मौमा है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि इनको पहले क्लैरिफाई करना है कि लॉज ऑफ फिजिक्स होते क्या हैं, और उसके बाद फिर देखना कि इनकी थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस खुदा के वजूद के बारे में क्या इम्प्लीकेशन होगी, क्योंकि अभी सूरत हाल ये बन रही है आइदर लॉज ऑफ फिजिक्स और गॉड, हमें लॉज ऑफ फिजिक्स चाहिए ये सफिशियंट है, खुदा हमें एक्सप्लेनेशन के लिए कायनात की नहीं चाहिए। तो नेचुरलिस्टिक पिक्चर में मुकम्मल हो जाती है पिक्चर अगर आप लॉज ऑफ फिजिक्स से शुरू करें और खुदा का बीच में कोई अमल दखल। तो ये दोनों चीजें भी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने पेश करनी है, उसके बाद फिर हम इन सब चीजों का तज्जिया करेंगे इंशाल्लाह साइंस के लिहाज से भी और थियोलॉजी के लिहाज से। तो यहां पर मैं जिसको खत्म करता हूं, और जाहिर है कि जी ये मेरे अकेले का काम नहीं है, इसमें बैक एंड पे बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, और ये तमाम इसातिज़ा जिसमें हमारे उस्ताद जनाब रेहान अहमद यूसफी साहब भी शामिल हैं, तो ये कोलैबोरेटिव किस्म का काम है जो कि हो रहा है, और इंशाल्लाह आप के पास एक किताब तो आ गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं, सारी चीजों को डिटेल में देख सकते हैं, और उस किताब का जो अपडेटेड एडिशन है वो एक मुकम्मल, आप समझ लें कि एक उसमें हर चीज आ जाएगी, रूह, खुदा, इल्म और ये जो फिजिक्स बेस्ड और बायोलॉजिकल बेस्ड एथियज्म है, साइंस बेस्ड, तमाम उसके एक अम्ब्रेला बन जाएगा जिसके अंदर ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो
अस्सलाम वालेकुम।
जी
वालेकुम सलाम।
एक्चुअली हैंड रेज करने की ना ऑप्शन,
आप सवाल कर लें, कोई बात नहीं, अब तो कर लिए, कर लें।
जी जी, वो हैंड रेज करने की ऑप्शन एक्चुअली शायद जो है ना वो मेरे से वो मिल नहीं रही थी। ये जो आज की डिस्कशन हुई है इसके हवाले से तो मतलब बहुत डिफरेंट एंगल्स में क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो एंगल एक समझता हूँ जो कंक्लूजन की तरफ जाने के लिए ज़्यादा फास्ट मेरे ख्याल में हो सकता है, वो मैं इस हवाले से पूछना चाह रहा था कि जब हम ये कहते हैं कि एक ये फिलोसफिकल चीज़ है या एक साइंटिफिक चीज़ है, तो जब हमने ये एक नया मैटर जिसकी प्रॉपर्टी एक नॉर्मल मैटर से डिफरेंट है, जिसको हमने जिस तरीके से डिके होके वो दोबारा नॉर्मल मैटर की प्रॉपर्टीज में वापस जा रहे हैं, तो ये साइंटिफिक डिस्कशन भी यूं लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं जाके एक फिलोसफिकल डिस्कशन बन रही है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो, क्योंकि थ्योरी खुद एक फिलोसफिकल चीज होती है, तो ये जो डिस्कशन है कि क्या चीज साइंटिफिक है और क्या चीज फिलोसफिकल है, तो अगर इस तरीके की किसी थ्योरी के ऊपर हमने किसी साइंटिफिक डिस्कशन को लेकर चलना है, तो उससे तो बेहतर है कि हम फिर फिलोसफिकल डिस्कशन में रह के ही बात कर ली जाए इस सारी चीजों को। मतलब मैं ये क्वेश्चन है मेरा कि ये इन द बेसिक ये फिलोसफिकल ही है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये साइंटिफिक कैसे है फिर, हम जिस लेवल पर जाके इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो इन होल ही हमें एक फिलोसफिकल चीज ही लग रही है। इस तरह की और बहुत सी थ्योरियां हम अगर अरस्तु, बुकरात, सुकरात और उनको लेके आए, या आजकल के दौर में भी हम एक चीज क्रिएट करते हैं और उसमें से नतायज अखज करते हैं, तो वो ये इसी तरह की चीज ही हो रही होती है जो कि आज हमने उस मैटर, नया मैटर इंट्रोड्यूस तो नहीं, मतलब जो उसकी डिस्कशन की, ये मेरा क्वेश्चन।
जी, इसमें अर्ज ये है कि ये बात ठीक है कि इसमें कुछ इंफ्रेंसेज उसी किस्म के पाए जाते हैं जो कि मेटाफिजिकल इंफ्रेंसेज हैं, और जो न्यू फिजिक्स है या थियोरेटिकल फिजिक्स है उस पर ये एक एतराज वारित होता है कि उसमें जो थियरीज वगैरह होती हैं वो तमाम की तमाम, जैसे कि मल्टीवर्स थियरी है, वो अभी तक टेस्टेड नहीं है। यानी मेटाफिजिक्स और फिजिक्स में बुनियादी फर्क क्या है, मेटाफिजिक्स के अंदर हम क्लासिकी तौर पर तो ये करते थे कि बस जहन का इस्तेमाल करते थे और जहन से हम करते चले जाते थे इन्फ्रेंसेस, और जो मुशाहदाती कायनात है उससे तो बिल्कुल इन्फर हम नहीं करते थे क्लासिकी सेंस में, जो प्लेटो वगैरह का जो नुक्ता नजर जिसने यहाँ हमारी दुनिया में बहुत अरसे हुकूमत की है। और साइंस ने क्या चीज पैदा की, साइंस ने ये चीज पैदा की कि हम मुशाहदा करें, हम तजर्बा करें और उसके बाद इल्म पैदा करें। अच्छा, ये तजर्बा मुशाहदा इसके जरिए से इल्म हासिल होना नहीं होना, ये फिर इसके पीछे कुछ फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है, लेकिन इसका जो फिर आप एक प्रैग्मेटिक तरीके से देखें तो कम अज कम यहां पर बात आ जाती है कि जो चीज आपकी ऑब्जर्वेशन में आती है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आए, उसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी थ्योरीज को फॉर्मुलेट करते हैं, और उन्हीं से चलते चलते आप क्या करते हैं, यानी लॉजिकली ये क्यों बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाती है कि आप इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ढालते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ढालते हैं तो ये इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती, लॉजिकल रहेगी। ये कंसिस्टेंट एक पिक्चर बनाते हैं और उसमें फिर वो जो मैथमेटिक्स है वो बहुत सारी प्रिडिक्शंस करता चला जाता है, जैसे कि ये जो मल्टीवर्स है ये भी मैथमेटिकल एक प्रिडिक्शन है हमारी थ्योरीज की, या ऐसा एंटी ग्रेविटी मैटर पाया जाना चाहिए था, ये आइंस्टाइन की जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है उसकी ये प्रिडिक्शन है कि ऐसा होना चाहिए। तो देखें कि आप हमारी
प्रिडिक्शन तो ऐसा सच एक फिलोसफिकल चीज होगी ना,
प्रिडिक्शन एक मिनट में उसी तरफ आ रहा था कि देखें यहां पर एक जो स्ट्रिक्ट चीज पाई जाती है वो ये कि हम ऑब्जर्वेशन पर बहुत जोर डालते हैं। ऑब्जर्वेशन से जैसे हम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको देख नहीं सकते, उनको इन्फर करते हैं, उनकी थियरीज बिल्ड करते हैं, लेकिन वो थियरीज उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरती हैं, जैसे आइंस्टाइन की अपनी ग्रेविटेशनल थियरी गुजरी, और उसके बाद वो करते करते वो साइंसी हकायक बनना शुरू हो जाते हैं, या साइंस के अंदर जब उसका एविडेंस मिल जाता है तो वो श्योरिटी की हद तक, या आप कहने की यकीन की हद तक वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है। तो ये एक फर्क जरूर मौजूद है मेटाफिजिक्स में, प्योर मेटाफिजिक्स में और फिजिक्स में, कि फिजिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इनसार करेगी, अगर कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया भी है तो वो एक तो मैथमेटिकली कंसिस्टेंट होगा, जो कि मेटाफिजिक्स में क्लासिकी तौर पर नहीं पाया जाता, और दूसरा ये होगा कि वो उसको टेस्ट करने की असहद कोशिश की जाएगी, और टेस्टिंग के बाद वो मतलब ज्यादा से ज्यादा काबिल एतमाद एक थ्योरी बन जाएगी। तो ये ऐसे नहीं है कि जैसे जो जिस पर गजाली ने भी बहुत कमेंट्री की है फिलोसफा पर, कि आप प्लेटो हैं, आप बैठे हैं और आप कहते हैं कि जो मेल जानवर होते हैं उनकी उनकी जो दाढ़ है उसमें ज्यादा दांत पाए जाते हैं फीमेल्स की निस्बत, तो वो ये बॉदर नहीं करेंगे कि मैं बाहर जाकर या अपने बीवी का ही मुंह खोलकर उसके दांत गिन लूं। क्यों? क्योंकि वो जो मेटाफिजिक्स है क्लासिक की, वो कहती है कि इस दुनिया के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं वो अपनी एक ऐसी हालत में पाई जाती है जो उनकी प्योर फॉर्म नहीं है, प्योर फॉर्म में ये आलम अरबाह में पाई जाती है, एक और आलम में पाई जाती है। तो असल जो ये तो उसकी उसके सिर्फ परतों हैं, मैं और आप और बाकी, असल तो वहां पाई जाती है, और असल जो आलम है उससे रूह का ताल्लुक है, रूह वहां पैदा हुई और वहां से इस आलम में आन पड़ी है। तो आप सोच विचार से, जो सूफिया है वो मेडिटेशन से, और कुछ दूसरे लोग भी ईस्टर्न फिलोसफर्स, और ये लोग जो हैं वो कहेंगे कि अकल के जरिए से अब हम तमाम नॉलेज हमारे अंदर है, गधे की प्रॉपर्टीज को जानना है तो इस गधे को देखने की कोई जरूरत नहीं, इसका जो असल प्योर फॉर्म का गधा है असल नॉलेज उसका है, वो तदब्बुर से तफक्कुर से वो नॉलेज मिलेगा, और वो एक कमरे के अंदर बैठकर किसी बाहर के गधे को देखने की जरूरत नहीं है, वो उस गधे को जिसको रूह जानती थी पहले से उसके साथ रही हुई है, उस गधे की के सारे तसव्वुरात को ज़हन के अंदर अकल से पैदा होना शुरू हो गए। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है इस मेटाफिजिक्स में और उस मेटाफिजिक्स में। लेकिन जो इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस जो कि फलसफे में भी होता है और जो मजहब में भी होता है, खुदा के वजूद में भी होता है, वो इन्फ्रेंस ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर पूरी कुव्वत से हो रहा है, और ऑब्जर्वेशन से ही इन्फ्रेंस हमें पहले मरहले में खुदा की तरफ लेकर जाता है। तो ये बात दुरुस्त है कि कुछ ओवरलैपिंग यहाँ पर है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं।
जी ठीक है, मुकम्मल तिशनगी तो दूर नहीं हो सकी, लेकिन बहरहाल मुझे समझ आ गई।
बहुत मुश्किल ये बहसे हैं, इसके ऊपर पूरी पूरी किताबें बल्कि इंसाइक्लोपीडियाज आपको मिल जाएंगे, तो एक लेक्चर से तो बिल्कुल नहीं होगी, एक लेक्चर तो सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ी सी डायरेक्शनैलिटी दे दूं। अब आगे अगर आपने इल्म रसूख पैदा करना है तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप फॉर एग्जांपल स्टीवन हॉकिंग की ये किताब देखें, पॉपुलर पब्लिक के लिए उन्होंने लिखी है, मेरी किताब देख लें, इसी तरीके से ये बाकी फिजिसिस्ट की, ये जो ब्राउन फिजिसिस्ट हैं हमारे काफी, टायसन मशहूर, ये किताब बहुत अच्छी है इसी थीसिस को जानने के लिए। और फिर जो फिलोसॉफिकल इसके एस्पेक्ट्स हैं, देखें वो मैंने भी रेज की है, पहला चैप्टर मेरा इसी से मुतल्लिक है जो आपने सवाल उठाया, और जो किताबें बाकी फिलोसफर्स ने लिखी हैं स्टीवन हॉकिंग के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये किताब है, या जॉन लेनक्स की एक अच्छी किताब है, उसका नया वर्जन भी आ रहा है, उसमें आपको फिर पॉल डेविस, ये भूलना नहीं चाहिए इनको, ये बहुत अहम शख्स हैं, पॉल डेविस पॉपुलर लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं और बहुत आसान जुबान में सारी बात समझाते हैं, और ना सिर्फ फिजिसिस्ट हैं बल्कि मंजे हुए फिलोसफर भी हैं, तो इन सारी चीजों को ये क्लैरिफाई करेंगे, तो आपको देखनी पड़ेगी एल्सवेयर, गौर से देखना पड़ेगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप इन चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो उसके नोट्स बनाएं या अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करें या लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इससे और ज्यादा इल्म रसूख पैदा।
जी सर, मुझे इजाजत है सर, मैं करूं सर सवाल, एक छोटा सा, मुझे लग रहा है आखिरी मैं हूँ। मेरा नाम उमर है सर, और
पूछना है
जी सर,
मैंने भी क्वेश्चन पूछना है अभी।
अच्छा अच्छा, मैं बस जल्दी फिर मैं छोटी सी बात कर देता हूँ सर। मेरा नाम उमर है, और मुझे जो अभी तक कभी जो एनकाउंटर हुआ किसी मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर का, तो मुझे ये समझ आई कि एथियस्ट का एक बड़ा पक्का, एक बड़ा जोरदार किस्म का अटैक होता है हम थियस्ट पे, कि कभी कभार वो हम सबको एक लाइन में खड़ा करते हैं, चाहे वो अब्राहमिक रिलीजन हैं, चाहे वो दूसरे ये हिंदुइज्म और दूसरे हैं जो किसी ना किसी शक्ल में एक से ज्यादा खुदा को मानते हैं, और वो एक बड़ा जोरदार किस्म का अटैक ये मारते हैं कि आप सब मिथोलॉजीज पर बिलीव करते हैं। एक ग्रुप जो है वो दूसरों की मिथोलॉजी को मजाक में उड़ा देता है, जैसे कि यकीनन हम मुसलमान कह सकते हैं कि ग्रीक मिथोलॉजीज क्या थी यार, या हिंदू मिथोलॉजीज क्या है, तो वो लोग आपके जो अब्राहमिक रिलीजन का एक गॉड है उसको वो उसी तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये उनका एक बड़ा मिथोलॉजिकल कह के ना सारे मजाहिब की पुरानी उनको एक लाइन में खड़े करके एक गोली से सबको उड़ा दिया उन्होंने। और फिर मुझे ये भी फील हुआ कि हमारी तरफ से कुछ थीस्ट की तरफ से ये जवाब सवाल आया कि अगर हम खुदा को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते तो आप लोग डिसप्रूव नहीं कर सकते। तो मुझे आज के आपके सेशन से ये अंदाजा हुआ है कि शायद कुछ एथिस्ट जो हैं, जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट, ये स्टीफन हॉकिंग वगैरह, इन लोगों ने ये कोशिश शुरू की हुई है कि साइंटिफिकली डिसप्रूव करें खुदा को, और यकीन करें वो इस चक्कर में मिथोलॉजीज की तरफ चले गए। मेरे से पिछले भाई जिन्होंने बात की थी उनकी मेरी एक जैसी फीलिंग्स हैं कि क्या ये क्वांटम फिजिक्स की इतनी डिटेल्स ये मिथोलॉजीज की तरह नहीं है, क्योंकि ये थ्योरीज है, इनको एक आम बंदा ना कभी समझ पा सकता है, ना उनको उनके जो अगर उनके ऊपर कोई काउंटर आर्गूमेंट हो रहा है तो एक आम बंदे के लेवल की चीज तो है नहीं। तो अगर एथियस्ट जो है वो इन मिथोलॉजीज पर बिलीव करना चाह रहे हैं तो थियस्ट उनकी नजर में, एथियस्ट की नजर में वो किसी और मिथोलॉजीज पर बिलीव करना चाह रहे हैं, तो सब हम एक ही जगह नहीं खड़े हो
गए। आपका 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 जी बिल्कुल सवाल वाजे है। ये जो आपने कहा है ना कि तमाम जो थियस्ट होते हैं उनको एक लाइन में ये खड़ा करके तो मिथोलॉजी इसको कंसिडर किया जाता है, ये स्टीफन हॉकिंग ने यही बात अपनी किताब में की भी है। इसका बहुत अच्छा टू द पॉइंट तबसरा आपको इस किताब में मिल जाएगा। ये जॉन लेनेक्स की एक किताब है जिसमें वो बयान करते हैं कि जो मिथोलॉजीज हैं वो वाला मामला जो इब्राहिमी मजाहब है उनका नहीं है, और इब्राहिमी मजाहब में बाइबल और कुरान मजीद दोनों का मिजाज यही है कि वो इस एम्पिरिकल हकीकतों को मानता है और इन्हीं पर बेस करके सारे अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं, जिसको ये जिस पर अभी हमारे उस्ताद जनाब रेहान यूसफी साहब भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने कुरान मजीद के इस पहलू को मजीद वाजे किया, तो बल्कि वाजे करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें जिस तरह हम लोग तमाम लोगों को एक काफिर डिक्लेयर करके और उनको एक नजर से देखते हैं तो वो भी इंसान है दूसरी तरफ के भी, तो वो भी हमें इसी तरह से फर्क नहीं करते। अच्छे लोग करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो नहीं करते। ये उसी तरह की बात है कि बुद्धिस्ट ने कुछ मुसलमानों को मारना शुरू किया, उन बुद्धिस्ट के दो ग्रोह थे, एक ग्रोह जो था वो कहता था, वो अपने ही जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रोह था उसके खिलाफ था और उनको मना करता था, और बहुत उनकी कुर्बानियां भी हैं तो जैसे हमारा और तालिबान का जो मामला है, तो लेकिन बदनाम हुए तो तमाम बुद्धिस्ट बदनाम हुए, हम तमाम बुद्धिस्ट को कहते हैं कि ये बड़े जालिम और इस तरह के होते हैं, तो ये हो जाया करती है ऐसी चीजें। इसीलिए जरा डीप डाउन डिटेल में जाके हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और देखना चाहिए, वो यहां पर भी हमें करना चाहिए। इसमें जो आपने कहा कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर वो गप्पे हैं या इस किस्म की बात है, नहीं, ये बहुत ज्यादा होगी। क्वांटम फिजिक्स की कुछ चीजें जो हैं, बल्कि जो बुनियादें हैं वो बहुत मोहकम है, और क्वांटम फिजिक्स की जो चीजें हैं वो जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ, या आप कह लें कि जो प्रिडिक्शन करती है वो क्वांटम फिजिक्स, और जो हमें एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स आते हैं इतनी बेहतरीन तरीके पर, डाउन टू पता नहीं कितने डेसिमल पॉइंट्स तक, इतनी एक्यूरेसी के साथ आज तक कोई थ्योरी टेस्ट नहीं। तो क्वांटम फिजिक्स एक बिल्कुल अलहदा चीज है, क्वांटम फिजिक्स से आगे इंफ्रेंसिस करना या उसकी इंटरप्रिटेशन से इंफ्रेंसिस करना वो एक अलहदा चीज है। क्वांटम फिजिक्स
सर यही मैं अगर मेरा ख्याल है, आई होप मैंने गप्पे का लफ्ज यूज नहीं किया, बट मेरी शायद अच्छा है अगर मैंने ये फीलर दे दिया है तो उससे वो एक लेमैन स्टाइल तो आ गया। मैं जस्ट यही कहना चाह रहा था कि मैं ये फील कर रहा हूँ कि एथियस्ट जो है वो साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, वो अपनी मेटाफिजिक्स का या क्वांटम फिजिक्स का सहारा इस तरीके से ले रहे हैं कि वो उसको शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं।
देखें यहाँ पर एक और मसला पैदा हो रहा है। देखें प्रूफ जो है ना वो मैथमेटिक्स में होते हैं, यहाँ पर जो साइंस है उसके अंदर सिर्फ एविडेंस होता है, यानी कोई चीज प्रूव नहीं होती साइंस में कभी भी, वो एविडेंस ही होता है उसका। इवन हाइड्रोजन और वाटर से जो चीज वजूद में आएगी पानी, तो उसका भी एक एविडेंस हम प्रोड्यूस करते हैं। देखें ये जो बात है ना कि वो डिसप्रूव करेंगे, डिसप्रूव जो आप इवन रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ें, आप स्टीवन हॉकिंग को पढ़ें, इनका मुकदमा खुदा को डिसप्रूव करना नहीं है, बल्कि स्टीवन ये जो डॉकिंस है वो तो मजाक कर देते हैं कि हम खुदा को डिसप्रूव नहीं कर सकते, उसी तरीके से जैसे कि आप अपने घर में बैठकर सोचें कि कायनात के सोलर सिस्टम में एक कोई कप जो है या एक चैनक जो है वो मूव कर रही है, तो इतने बड़े सोलर सिस्टम में हम उसको ढूंढ नहीं सकते, तो डिसप्रूव तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको पॉजिटिव एविडेंस प्रोड्यूस करना है किसी चीज को मनवाने के लिए। तो बात यह है कि वो कहते हैं बेसिकली कि खुदा स्टीवन हॉकिंग, डॉकिंस और बाकी तमाम फिजिसिस्ट जिनको मैं जानता हूं, वो ये नहीं कहते कि हमने खुदा को, फिजिसिस्ट और बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जो कि खुदा का इनकार करते हैं, वो कहते हैं खुदा इम्प्रोबेबल है, खुदा को नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि हमने साबित कर दिया कि खुदा नहीं। देखिये मैंने शुरू में आपको ये चीज इसीलिए यहां पर ये बताई थी कि ये देखें शुरू में एक इबहाम से पैदा हुआ, कुछ क्वेश्चंस पैदा हुए खुदा के बारे में, और उसके बाद जो न्यू एथियज्म है उसने क्या किया कि ये किया कि कहां गई जी पिक्चर, ये है जी, देयर ऑट टू बी नो गॉड, खुदा को नहीं होना चाहिए और खुदा की कोई जरूरत नहीं कायनात को एक्सप्लेन करने में, ये है उनका मुकदमा।